शतनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम् प्रेमापुमर् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छव भूत्वादीन गणेश को करुणया कौपीन कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नो मुहु वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को हरे कृष्णा। तो आप सभी पराविद्या अनुरागी कृष्ण भक्ति प्रेम रस पिपासु वैष्णव वृंदों के चरण कमलों में सादर वंदन है। मातृभाषा गुजराती है, जीवन में प्रथम बार श्री गौर गुण साप्ताहिक रूप में गाने का ये दास का प्रयास राष्ट्रभाषा में होगा। आशा है आप सभी वैष्णव समझते हैं और समझेंगे, ये भरोसा भी है। इसलिए हिंदी में कहूंगा क्योंकि हिंदी भाषा संस्कृत के और बंगला के बिल्कुल नजदीक है, ताकि हम उस संस्कृत जो देव भाषा है और देवों के देव गौरांग देव की जो बंगला भाषा है उससे हम बिल्कुल नजदीक चल सके। वैसे आप सभी शिल प्रभुपाद की परम करुणा कृपा अनुकंपा से श्री कृष्ण चैतन्य तत्व को लीला को कुछ जानते हैं, समझते हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। वैसे इस विश्व में प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रसिद्ध कर दिया है, लेकिन सारे विश्व का गुरु माना जाता है भारत देश। भारत केवल देश नहीं, विश्व के लिए संदेश है। और श्री गौरांग महाप्रभु के पवित्र शब्द है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि सनातन धर्म की जो ये संस्कृति है उसको संत और शास्त्र से सत्य रूप में समझे और पूरे विश्व में संस्कृति शास्त्र सार श्री कृष्ण भक्ति और तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन इसका प्रचार करें। जैसे हम गाते हैं कि राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पर प्रकट नहीं होते तो क्या होता। वासुदेव घोष चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी पार्षद इसको गाते हैं, राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानात के यदि गौर न है तो तबे की है तो के मनो धरी ताम दे। ये वृंदावन का जो प्रेम रस है जिसकी पूर्ण पराकाष्ठा महाभाव वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी में है, उस रस को आस्वादन करने के लिए जगत गुरु श्री कृष्ण भी राधा के शिष्य बनने को तैयार है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, कृष्णम वंदे जगत गुरु कहलाने वाले श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी प्रेम में मेरी गुरु है और आमी तार शिष्य नट, मैं तो उसका एक शिष्य हूं। और गुरुदेव के चरण कमल सर पर धारण करने के लिए गीत गोविंद में प्रार्थना भी कर दी, स्मरगर लखंडनम शिरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जयदेव गोस्वामी के हृदयस्थ में दिव्य लीला प्रादुर्भाव तो कर दिए, लेकिन जयदेव जी साहस नहीं कर पाए तो स्वयं आकर अपने श्री हस्त से लिख कर गए कि ये सत्य है। जयदेव गाया है ब्रज के रसिकों ने रसखान ने, ब्रह्म ही ढूंढो वेद पुराणन गानन, जिस पर ब्रह्म को वेद पुराण ऋषि उपनिषद ढूंढते रहते हैं अंत में नैति नैति करके थक जाते हैं। बलोटत राधिका पायन बैठो कुंज कुटीरन में, अरे जाइए सेवा कुंज में निधि वन में श्री धाम वृंदावन में यमुना के तट पर राधिका के चरणों में लौट रहा होगा। राधा र महिमा प्रेम रस सीमा, प्रेम के रस का अगर अर्णव हो समुद्र हो तो उसकी सीमा कोई है तो वो अलादिनी श्री वृषभानु नंदिनी का हृदय है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति कहने वाले गोविंद भी चक्कर में आ गए, राधा हृदय को नहीं समझ पाए। समझेंगे आप सभी कृपा समर्पण श्रद्धा हृदय लेकर आए हैं तो, लेकिन दास निवेदन यह करना चाहता है कि जैसे वासुदेव जी ने गाया कि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो राधा कृष्ण के वृंदावन प्रेम रस लीला को दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन शिल प्रभुपाद जी के वरिष्ठ सन्यासी शिष्यों में जिनका स्थान है, जिनके कारण आज मायापुर की यात्रा पूरा विश्व कर रहा है, ऐसे इस होलीनेस जयपताका गोस्वामी महाराज ने अपने गुरुदेव के लिए यही भाव किया। यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो जीवन बहुत किसे। चलो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर भारत में भ्रमण करके हरिनाम संकीर्तन गंगा को बहा दिए, स्वयं गंभीरापुरी धाम में राधा प्रेम रस का आस्वादन भी कर लिए, लेकिन विश्व तो इस कृपा से वंचित रह जाता अगर ऐसी भक्ति विदान स्वामी शिल प्रभुपाद नहीं हुए। इसलिए हे कृष्ण करुणा सिंधु हम कहते हैं, लेकिन उसी के प्रतिनिधि स्वरूप वैष्णव गुरु आचार्य को भी वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य, उसको भी कृपा सिंधु कहा। लेकिन कृष्ण से भी गुरु वैष्णव आचार्य की कृपा बढ़कर है, क्योंकि कृष्ण गीता में ये गोविंद न्याय करते हैं, कुछ कर्म बताते हैं, इस अनुसार फल देते हैं। लेकिन श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, अधम उदाहरण, अधम के भी उद्धार करने वाले में कृष्ण से भी बढ़कर है कृष्ण के प्रेमी गुरुजन। भक्ति वेदांत स्वामी के हृदय में करुणा की एक बाढ़ आ गई कि समुद्र में जलदूत में चढ़ ही गए, और पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम भक्ति हरिनाम संकीर्तन से अप्लावित निमज्जित कर दिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो सप्तम गोस्वामी या भगीरथ माने जाते हैं प्रेम भक्ति गंगा के, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि चैतन्य महाप्रभु का एक प्रेमी पार्षद पृथ्वी पर आएगा, जो महाप्रभु की इस दिव्य भविष्यवाणी को सत्य सार्थक करेगा। और आज पूरा विश्व लोहा मानता है और नतमस्तक होता है श्रील प्रभुपाद के चरणों में कि उन्होंने ये कर दिया कृष्ण की कृपा से। इसीलिए मानव समाज चाहे ऐसे संत को जाने माने न माने, लेकिन ऋणी रहेगा युगों तक मानव समाज इस ऐसी भक्तिवादी स्वामी प्रभुपाद का, जिन्होंने कृष्ण को दिया, कृष्ण से अभिन्न महाप्रसाद को दिया, कृष्ण का दिव्य मंगलमय हरि नाम संकीर्तन और नित्यम भागवत सेवया दिया। श्री नीताई गौरेर परम करुणा, ये निताय और गौर सुंदर की परम करुणा अगर प्रभुपाद नहीं होते तो की देत जगत देशे, ये पूरे विश्व के जितने भी देश है उसमें कौन देता अगर प्रभुपाद नहीं। निताय गौर की करुणा तो है लेकिन कौन देता। और सार है, शास्त्र सार शिरोमणि श्रीमद् भागवतम, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम प्रेम पुमर्थो महान, परम अर्थ चार पुरुषार्थ से भी बढ़कर कृष्ण प्रेम परम पुरुषार्थ पंचम पुरुष जो भागवत के अक्षर अक्षर में भरा है, शब्द में नहीं, अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, लेकिन प्रेम रस श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में भरा है। क्योंकि रसमय मधुराधिपते अखिलम मधुरम की साक्षात मूर्ति है श्रीमद् भागवत, लेकिन संस्कृत में है। गीता भागवत चैतन्य चरित, और चैतन्य चरित्र क्या है, बोले वेदांतों का सार वेदांत सूत्र का भाष्य श्रीमद् भागवतम है, तो श्रीमद् भागवत का भी भाष्य भक्ति विनोद ठाकुर अमृत प्रवाह में लिखते हैं कि चैतन्य चरिता अमृत, लेकिन वो बंगला में है। गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार, प्रेमामृत रस सार, प्रेम और अमृत और रस का भी सार। देखो शब्द छोटे हैं लेकिन इसमें बड़ा गहरा अर्थ पड़ा है। प्रेम शब्द की व्याख्या करने पर पोथा पट के जगमुआ, बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान भी चक्कर खा के गिर जाते। बृहस्पति का शिष्य उद्धव, न्याय शास्त्र सब पढ़ लिया, प्रेम शास्त्र के लिए व्रत भेजा ठाकुर जी ने, है कि नहीं, लेकिन प्रेम का सार रस है, कृष्ण रसमय है, रसो वैस उपनिषद कहता है, और उसका सार है ये गीता भागवत और चैतन्य चरित। क्या किया प्रभुपाद ने, रात रात भर जागकर इतनी बूढ़ी आयु में इतने मंदिरों का कार्यभार संभालते हुए, इतने शिष्यों को दीक्षित शिक्षित प्रशिक्षित करते हुए, पूरे मानव समाज के महामंगल के लिए बड़ी तपस्या करके इसका अनुवाद दिया, तात्पर्य दिया, खुद पढ़ पढ़ के भागवत पुराण उपनिषद अन्य पुराण उसमें श्लोक टांग टांग के तात्पर्य में दिया भक्तिवेदांत स्वामी। कतना सुंदर सरल करिया, सरल कर दिया, संस्कृत नहीं आता कोई बात नहीं, महाम्लेच्छ भाषा अंग्रेजी में भी दे दिया, और उसके शिष्य ने कोई भी हो फ्रांस में भी, यहां तक कि उर्दू में भी, बताओ ये मलयालम कन्नड़ ये तो बड़ी ऊंची भाषा मानी जाएगी, म्लेच्छ भाषा में भी प्राप्त कर दिया प्रभुपाद ने, कई भाषाओं में विश्व की लगभग लगभग 80-90% भाषाओं में पहुंच गई हमारी। तो ये सत्य है ना, कोई केवल केवल भावुकता नहीं है, इट इज रियलिटी, वास्तविकता है। इसीलिए भक्तों कृतज्ञता दोष से बचने के लिए जब तक सांस चले ना संकल्प होना चाहिए कि न्योछावर करेंगे ऐसे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी के चरणों में ये जीवन जिन्होंने ये दिया है, जो भी आज हमें मिला है ये मान सम्मान धन ज्ञान प्रेम भक्ति ये श्रील प्रभुपाद की करुणा की वर्षा है, और इसके प्रति आदर है तो इसके शिष्यों के प्रति, इनके प्रशिष्यों के प्रति, इनकी संस्था के प्रति हमेशा सैल्यूट नतमस्तक होना चाहिए। के बुझाई तैयार, कौन बुझाना, मतलब टू अंडरस्टैंड, समझाना, बंगला में कहते कि बुझते पारी, समझते हो ना। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो कौन समझाता इस शास्त्र सार प्रेम रस सिद्धांत को। इसीलिए आज के इस मंगलमय श्री गौर गुण गाथा श्री चैतन्य चरितामृत की आप सब वैष्णव सन्निधि उपस्थिति चरणारविंद में दास कुश वाणी सेवा करेगा, उसके पहले हमारे परम गुरु को श्रील प्रभुपाद को मैं स्मरण करता हूँ और उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी शुद्ध मति बनाए रखे कि शास्त्र और सिद्धांत विरुद्ध कोई बात न निकले और जीवन वैष्णव गुरु चरणों में समर्पित रहे। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार, ये करुणा है आपकी दास की, हम लोगों की क्या योग्यता है, दोपहर में क्या खाया वो भी भूल जाते हैं, मत स्मृति, कोई है जो स्मृति दे रहा है और किसी के संबंध से दे रहा है, कृष्ण स्मृति दे रहा है लेकिन किसी वैष्णव गुरु के संबंध से दे रहा है, ये तो सबके हृदय में, सबको देना चाहिए, क्या बात है, देना चाहिए कि नहीं सबको, सबको क्यों नहीं दे, आप और हमको कुछ है हरि स्मरण तो ये गुरु कृपा है। कांधिया कांधिया, इसलिए बस मैं और कुछ कर नहीं सकता, अश्रुत बिंद दो गिरा के बस एक प्रार्थना हो सकती है कि राखी आपके चरणों में रखना, हे वैष्णवो हे गुरुजनों कुछ भी हो जाए हमें आपके चरणों से दूर नहीं रहना। नरोत्तम दास बले अपनार बली, आप केवल एक बार कह दो कि तू मेरा है बेड़ा पार। प्रति जन्मे करी आशा, मैं प्रति जन्म ये आशा करता हूं चरनेर धूली, वैष्णवों की चरणों की धूली का, क्यों, क्योंकि मही यसा पाद रजो भिषेकम निष्किंचना नाम नवृणी प्रयावत, प्रहलाद ने कह दिया, जब तक वैष्णव के चरण रज की अभिषेक नहीं होगा, कृष्ण प्रेम रस तत्व अभियान नहीं होगा। जड़ भरत भी इसी बात को दोहराते हैं श्रीमद् भागवत में। बस किसी के माध्यम से कृष्ण कृपा करते हैं और वो है वैष्णव। आप सभी वैष्णव के श्री चरणों में हृदय से धन्यवाद है, आभार है और आशीर्वाद की कामना है भिक्षा के रूप में कि एज इट इज यथारूप चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत को गा सकूं, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने जो व्यास है, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, उसने लिखा है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरित्र सिंधु को बोलना साक्षात स्वांश जिसको कहते हैं वे शेष अनंत शेष के लिए भी असंभव है, जीव की क्या कहे। अद्यपि शेष देव अनंत श्री मुखे, अद्यपि अनंत शेष, शेष देव उसको अनंत मुख है, हम लोग तो कहते हैं कि हजार मुख है सहस्त्रानन, लेकिन सहस्त्रानन वो प्रकट रखते हैं, वो चाहे तो सहस्त्र शिरो अक्षी मुखम भगवद गीता में कितने कर दिए। अद्यपि शेष देव अनंत श्री मुखे गाये न चैतन्य यश सीमा नाही देखे। अनंत मुखों से अनंत काल से गौर गुण गा रहे हैं लेकिन शेष भी शेष नहीं कर पाए। शेष समझते हैं ना नारियल की गुजराती भाषा में, और शायद आप पढ़ाई लिखाई किए होंगे तो उसमें भी शेष क्या बचता है, शेष कुछ नहीं बचेगा। लेकिन स्वयं शेष भी शेष नहीं कर पाए चैतन्य यश को। किसी साधु ने पूछा कि प्रभु जी यह बताओ कि अनंत शेष भगवान श्री विष्णु के स्वांश है, भगवत तत्व है, तो पाताल में क्यों पड़े रहते हैं, पृथ्वी के एकदम नीचे के लोकों में कभी ऊपर आते नहीं, भागवत कथा सुननी थी सनकादिक मुनि को तो उधर जाना पड़ा उसको, ऊंचा रस लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है, तद्विधि प्रणिपाते, जिसके पास हो वहां जाना तो पड़ेगा। अनंत शेष के पास बद्री का आश्रम में घूमने वाले पूर्वेशाम अपि पूर्वज चचारम ब्रह्मचर्यम अखंडितम सनकादिक मुनि ब्रह्मपुत्र गंगा की हरिद्वार की ऋषिकेश की गंगा की धारा में डुबकी लगाए तो गंगा की धारा के होते हुए पाताल में पहुंच गए। आपको पता है भक्तों गंगा के द्वारा पाताल से पहुंचा जाता है, कभी ट्राई करना तो जाइएगा हरिद्वार डुबकी लगाइए निश्चित पाताल ही पहुंचेंगे। केवल सनत कुमार ऐसे गए थे, मैत्रेय जी बोल रहे विदुर जी को भागवत में, और वो तो सतयुग की बात है, द्वापर में भी भीमसेन को गंगा में खीर पिला के डाल दिया तो कहां पहुंचे, पाताल तो पहुंचे, और वहां से कुछ अमृत रसाला पीकर आए तो दुर्योधन टेंशन कम करना चाहता था बढ़ गया। गरल सुधारी पुकार जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। सानुकूले जगन्नाथम सानुकूले जगत त्रयम, जिसके ऊपर श्री नीलाचल वाले जगन्नाथ अनुकूल हो जाए तो तीनों लोकों के ग्रह नक्षत्र देवी देवता असुर किन्नर गंधर्व सब अनुकूल हो जाएंगे। नमस्तस्मै भूतानि निम्न आप इव स्वयं ध्रुव प्रसन्न, ध्रुव जी आए तो भगवान को जिसने प्रसन्न कर लिया, यस्य प्रसन्नो भगवान गुण मैत्रादि भी हरे नमस्ते से भूतानि
ನಿಮ್ನ ಆಪ ಇವ ಸ್ವಯಂ ಭಾಗವತ್ 4:9-43. ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಜಾಯ ತೋ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ. ಔರ್ ಪ್ರತಿಕೂಲೆ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಔರ್ ಕಹಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕಿ ಭೌಂ ಚಡ್ ಗಯಿ ನಾ ಮಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ತಬೆ ಕಿ ಹೈ ತೋ ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಿ ಕುಛ್ ನಹಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ದುನಿಯಾ. ಪ್ರತಿಕೂಲೆ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಪ್ರತಿಕೂಲೆ ಜಗತ್ತ್ರಯಂ. ತೋ ಭೀಮ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಪಾಂಡವೋ ಕೆ ಊಪರ್ ಪಾಂಡು ಸುತ ಪ್ರಿಯ ಭಗವಾನ್ ಪಾಂಡು ಸುತ ಪ್ರಿಯ ಭಾಗವತ್ ಕಾ ಶಬ್ದ ಹೈ 19ವೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೃಪಾ ಕರ್ ದಿಯೆ ತೋ ಬಲ್ ಬಡಾ ಕೆ ಆ ಗಯಾ. ಲೇಕಿನ್ ಮೈ ಸ್ಮರಣ ಕರಾ ರಹಾ ಹೂಂ ಕಿ ವೋ ಭಿ ಐಸೆ ಹಿ ರಸ್ತೆ ಪಾತಾಲ್ ಸೆ ಗಯಾ ಥಾ. ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಮತ್ ಜಾಯಿಯೇಗಾ, ಅಭಿ ಪ್ರಚಾರ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಬಹುತ್ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ಕೋ. ಐಸೆ ತೋ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ವಹಾಂ ಜಾಯೆಂಗೇ ತೋ ಪಾತಾಲ್ ಮೇ ಭಿ ಪ್ರಚಾರ ಕರೆಂಗೇ, ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ಪೃಥ್ವಿ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಗಾಂವ್ ಬಾಕಿ ಹೈ, ಇಸಿಲಿಯೆ ವಹಾಂ ಆನಂದ್ ಶೇಷ್ ಹೈ ನಾ, ಸಂಭಾಲ್ ಲೇಂಗೆ. ಔರ್ ವಹಾಂ ಪಹುಂಚ ಗಯೆ ತೋ ಮೈತ್ರೇಯ ಜಿ ಕಹತೆ ಹೈ, ವಿದುರ್ ಜೋ ಭಾಗವತ್ ಪರಂಪರಾ ಸೆ ಮುಜೆ ಮಿಲಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಪೂರ್ವಜ ಯೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೋ ಅನಂತ ಶೇಷ ನೆ ಸುನಾಯಾ ಥಾ. ಫಿರ್ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ್ ಮುನಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ, ಫಿರ್ ಪರಾಶಯ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಮುಜೆ ಮಿಲಾ ಜೋ ಮೈ ತುಮೇ ದೇ ರಹಾ ಹೂಂ. ತೋ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ಏಕ ಊಪರ್ ಸೆ ಪರಂಪರಾ ಹೈ, ಏಕ ಪತಾಲ್ ಸೆ ಭಿ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಛಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಪಾತಾಲ್ ಮೇ ಕ್ಯೂ ಪಡೆ ರಹತೆ ಹೈ ಅನಂತ ಶೇಷ ಜಿ, ಕಭಿ ಕಭಿ ತೋ ಘುಮ್ನೆ ಆನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಉಸ್ಕೋ ಪೃಥ್ವಿ ಪರ್ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇ ಊಪರ್ ಕಹಿ. ಬೋಲೆ ಜಾನೆ ಕಾ ಏಕ ಕಾರಣ ಹೈ, ಪಹಲೆ ಊಪರ್ ಹಿ ಥೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಆದಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅವತಾರೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹರಿ ಗುಣ ಗಾತೆ ಥೇ, ಲೇಕಿನ್ ಎಂಡ್ ಹಿ ನಹಿ ಹುವಾ ಔರ್ ಶರಮ್ ಆ ಗಯಿ. ಭಾಗವಲಿ ಚಲಿ ಜಾಯೆ ಶೇಷ ಜಿ ಔರ್ ಸುನಾವ್, ಖತಮ್ ಕರೋ ಕಥಾ, ಸಮಾಪ್ತ ಕರೋ. ಶೇಷ ಜಿ ನೇ ಕಹಾ ಮೈ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾಊಂಗಾ, ಲೇಕಿನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಿ ಕಥಾ ಸಮಾಪ್ತ ನಹಿ ಹೋ ಸಕತಿ. ಭಾಗವಲಿ ಚಲಿ ಜಾಯೆ ಸಿಂಧು ತರಿ ಬಾರೆ ಯಶೇರ ಸಿಂಧೂರ ನಾ ದೇಖೆ. ಲೇಕಿನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಯಶ್ ಕಾ ಗುಣ ಕೆ ಸಿಂಧು ಕಾ ಎಂಡ್ ಯೇ ಸಮುದ್ರ ಕಿ ಸೀಮಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಜೋ ಗುಣ ಹೈ ಲೀಲಾ ಹೈ ಉಸ್ ಸಮುದ್ರ ಕಾ ಎಂಡ್ ನಹೀ. ಔರ್ ಯೇ ಬಾತ್ ಭಾಗವತ್ ಜಿ ಮೇ ಭಿ ಆಯಿ ಹೈ, ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಮತಲಬ್ ಆನನಂ ವದನಂ ಮುಖಂ, ಜಿಸ್ಕೋ ಹಜಾರೋ ಮುಖ ಹೈ, ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯ ಶೇಷಂ ಪ್ರಭು ಅಪಿ ಹಿಯಾ ಶಿತಿ ತಲ ಅಗಾರ್, ಶರಮ್ ಕೆ ಮಾರೆ ಗುಣ ಪೂರೆ ಗಾ ನಹಿ ಪಾಯೆ. ಇಸಿಲಿಯೆ ಶಿತಿ ತಲ ಪೃಥ್ವಿ ಕೆ ತಲ್ ಮೇ ಪಾತಾಲ್ ಮೇ ಅಗಾರ್ ಚಲೆ ಗಯೆ. ಐಸೆ ಹೋತಾ ನಾ ಕಿ ಕೋಯಿ ಕಾಮ ಠೀಕ್ ಸೆ ನಹಿ ಹೋತಾ ತೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಲಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ತೋ ನಹಿ ಜಾತಾ, ಗುಜರಾತಿ ಮಾ ನಕ್ಟಾ ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಹಿ ತೋ ಕೋಯಿ ಕಾಮ ಐಸಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ತೋ ಮುಂಹ ದಿಖಾನೆ ಮೇ ಶರಮ್ ಆತಿ. ತೋ ಶೇಷ್ ಅನಂತ ಶೇಷ್ ಸೋಚ ರೇ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಮುಂಹ ದಿಖಾಊ ಮೇ ಇನ್ ಸಭಾ ಮೇ, ಮೇ ಕರ್ ನಹಿ ಪಾಯಾ ಪೂರಾ ಕಾಮ. ತೋ ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಪಿ ಹಿಯಾ, ಹಿಯಾ ಮತಲಬ್ ಶರಮ್ ಕೆ ಮಾರೆ ಶೀತಿತಲ ಮಗಾತ್, ಸುಖದೇವ್ ಜಿ ನೇ ಗಂಗಾ ತಟ ಪರ್ ಬೋಲ. ಅಬ್ ಬತಾವ್ ಸಹಸ್ರಾನಂ ಭಗವಾನ್ ಶೇಷ್ ಕಿ ಗೌರ್ ಗುಣ ಗಾಥಾ ಮೇ ಯೇ ದಶಾ ಹೈ ತೋ, ಹಮ್ ಆಪ್ ಕಿಸ್ ಖೇತ್ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ಸಕ್. ಏಕ್ ಹಿ ಆಧಾರ ಹೈ ಗುರು ವೈಷ್ಣವ ಕೃಪಾ, ಕ್ಯೋಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಗುಣ ಗಾನಾ ಏಕ ಬಾರ್ ಸಂಭವ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಜಿಸ್ನೆ ಪ್ರೇಮ ಕಿಯಾ ಐಸೆ ಪ್ರೇಮಿ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಚರಿತ್ರ ಗಾನಾ ಯೇ ಅಸಂಭವ ಹೈ. ಸಾಕ ಮಣಿಕ ಗುಣ ಗಣ ಜೈಸೆ, ಜೆಸೆ ಸಬ್ಜಿ ಮಂಡಿ ಸಬ್ಜಿ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಧನಿಯಾ ಮಿರ್ಚಿ ಚಾರಾನಾ ಅಠಾನಾ ಕಾ ದಂಧಾ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಮಣಿ ಕಾ ಭಾವ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ, ಇಸ್ಕಾ ತೋ ಕೋಯಿ ಲೈನ್ ಹಿ ನಹಿ ಹೈ. ಕಾ ಜಾನೆ ಗಾಯ ಭೇಸ್ ಚರಾವನ್ ಹಾರೋ, ಮಹಲಿ ಕಿ ಗತಿ ಮಹಲಿ ಜಾನೆ, ಕೋಯಿ ಹಿರೇ ಕಿ ತತ್ವಜ್ಞ ತೋ ಕೋಯಿ ಜೊಹರಿ ಜಾನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಏಕ ಭಾಗವತ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ, ಶಾಯದ್ ಶಾಯದ್ ನಹಿ ಪಕ್ಕಾ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಗವಾನ್ ನೇ 24 ಗುರು ಬನಾಯ, ಇಸ್ಮೇ ಏಕ ಮಧುಮಕ್ಖಿ ಕೋ ಗುರು ಬನಾಯ. ಭಾಗವತ್ ಕೆ 11ವೇ ಸ್ಕಂದ ಮೇ आठ नौ दस तीन अध्याय है। और उस जो मधुमक्खी के गुरु, मधु को गुरु बनाकर, द बम्बल बी जो मधु हनी प्रोडक्ट करता है, वो मक्खी पुष्पों से सार लेकर मधु लेकर, क्योंकि मक्खी दो प्रकार की होती है ना, एक मधुमक्खी और एक वो कचड़ा वाली मक्खी, जलेबी पे पानी पूरी पे, फिर दूसरा भी उसका सेकंड माल वहां भी सब घूमती है, वो वाली मक्खी एक अलग है और एक मधुमक्खी है जो केवल पुष्पों पर बैठती है, रस लेती है। तो कहते हैं अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यो कुशलो नर, चाहे छोटा शास्त्र हो या बड़ा शास्त्र हो, 700 श्लोकों की गीता हो चाहे 18,000 श्लोकों का भागवत हो, अणुभ्यश्च अथवा महदभ्यश्च शास्त्रेभ्य, जो कुशल है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सर्वत्र सारमादाय पुष्पेभ्य इव षट पद, षट पद, षट मतलब छे, पद मतलब चरण, भंवरे को छे चरण होता है मधु को, एक भंवरा होता है मद, षट पदम षडंगरी कहते हैं उसको, भागवत का एक विषय है, भगवान भी मधु, राजा रानी कहते हैं कि रूप लेकर गए थे या कोई असली में भंवरा था, कृष्ण के मुख को कमल समझकर ऋषि मुनि भंवरे का रूप लेकर मंडराते रहते हैं, सारंगाणम पदम्बुजम, जैसे वो भंवरा वो मधु पुष्पों का रस लेता है, सार लेता है, ऐसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सारे शास्त्रों का सार पकड़ता है, सार ग्रहण करता है, फंसता नहीं उपासना में, कर्मकांड में, वेदवादता पार्थम जैसे कृष्ण कहते द्वितीय अध्याय, वो फंसता नहीं इसमें, सार को ग्रहण करता है। देखो वैष्णवो, एक नीति श्लोक में कहा है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम अल्पश्च आयु बहवश्च विघ्ना, शास्त्र एक एक अरण्य है, अनंत शास्त्र है, ये पुराण, ये पुराण, ये उपनिषद, क्या क्या बताए, इतने वेद, नाम भी नहीं मालूम, उपनिषदों के 108 नाम मालूम है, 3-4 नाम मालूम है प्रभुपाद की कृपा से, कठम मुंडक श्वेताश्वर बृहदारण्य, कुछ कुछ 8 तक पहुंचोगे ज्यादा से ज्यादा, प्रचारकों को बोला जा रहा है, दूसरे को तो क्या बोल रहे पता नहीं, ये जो पढ़ते हैं कुछ लोग उनको भी 8 या 10 में यही बोल हो जाएगा, 108 तो केवल बोलने का नाम, नाम भी नहीं पता तो पढ़ेंगे क्या बताओ उसमें, इसीलिए अनंत शास्त्रम। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अल्पश्चायु, हमारे पास समय बहुत कम है, और बहुवश्च विघ्ना, और पद पद पे विपत्ति है, पदम पदम ये तो विपदाम नतेशा, इसीलिए क्या करना चाहिए, यथा हंस शीर अंबु मध्ये, जैसे हंस पानी को छोड़ के दूध सार ग्रहण करता है, ऐसे हमें हंस बनना पड़ेगा, सत्संग शास्त्र का सेवन करते हुए भी सावधान रहना पड़ेगा, जैसे भागवत में आया है 1:18:7 निमिषारण्य के ऋषि मुनियों को बीच में सूत जी ने कह दिया, नानु द्वेष्टि कली सम्रा सारंग इव सार भू कुशलान्यासु सर्वत्र नेत्राणि कृतानिय। ऋषियों ने पूछा कि राजा परीक्षित समर्थ थे तो कलयुग को ध्वंस मार क्यों नहीं दिया, कलिना अधर्म मित्रेण, कलयुग आया तो कलमश आया, पाप आया, क्रोध ईर्षा सब कलयुग के दोष है, तो मार देना चाहिए, काम खत्म हो जाता, और वो समर्थ थे फिर भी क्यों नहीं मारा, तो उसका उत्तर देते हैं सूत जी महाराज, क्योंकि राजा परीक्षित जो है वो सारंग थे, सारंग भंवरे को कहते हैं, मधुप को कहते हैं, और इसका श्लेष, श्लेष मतलब रहस्यमय छुपा हुआ अर्थ, सारम सारम गायति इति सारंग, एक अर्थ ये भी है, और सार सार वस्तु को ग्रहण करे, सारम सारम ग्रहणयति इति सारंग। राजा परीक्षित सार ग्राही थे, क्योंकि उसने कलयुग के दोषों को ही नहीं देखा, उसमें कलयुग में भी सार क्या है वो देखा। जैसे भंवरा, वीर राघवाचार्य उसकी टीका में लिखते हैं कि नानु द्वेष्टि, एक साधु एक वैष्णव होता है ना, न अनुद्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से नहीं करता, बोले कलयुग से भी नहीं करता। कोई व्यक्ति कितना ही पाप करे, कितना ही गिरा हुआ हो, लेकिन साधु एक वैष्णव किसी से द्वेष नहीं करता, उसको स्वभाव में ही नहीं है ये द्वेष करना। वर्ण लोभी ने विकार रहित जय काम क्रोध निवारा रे। नरसिंह मेहता ने अपने वैष्णव भजन में वैष्णवों के गुणावली गाई है, किसी से द्वेष नहीं। हम तो अभी शायद वैष्णव बने कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हमें तो वैष्णवों से द्वेष है, वैष्णव को किसी से द्वेष नहीं होता, और हमें तो हो सकता है वैष्णव से, इसलिए बहुत निम्न अवस्था है हमारी। देखो भक्तों, ये चैतन्य चरित इतना मधुर है, इतना रसमय है, जैसे कच्ची कैरी को, कच्ची कैरी होती है ना तो खट्टी होती है, हरे रंग की होती है ना, आथना था है ना, रस न निकल, आखो वरा बगड़े नहीं, पहले थी बगड़ी गेलो माल हूं बगड़े। क्या बिगड़ेगा बताओ, लेकिन जब वो पक जाती है ना तो पीला रंग हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है वो आम, है ना, और उसके जो जो अम्ल था उसमें, जो खटास, जो खट्टापन था, वो रस मधुरता में बदल जाता है। दास को विश्वास है कि श्रद्धा से अगर चैतन्य चरितामृत सुनोगे ना तो ये हमारी जो एक क्रोध ईर्ष्या की जो खटापन है, ये द्वेष का ये जो कठोरतापन है, वो मधुरता में, कोमलता में, रसमयता में परिवर्तित हो जाएगा। इस शब्दों में वो शक्ति है, बस आश्रय लेने की कमी। इसलिए भक्तों, वक्ता बनने का कम प्रयास करो, वैष्णव बनने का ज्यादा करो। प्रचारक बनने से पहले पवित्र बनना पड़ता है, नहीं तो सारी खीर बनाने के बाद जैसे उसमें कंकर डाल दिया जाए ऐसी दशा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पसंद है, लेकिन एक द्वेष पसंद नहीं और दूसरा दंभ पसंद नहीं। कविराज जिसने चैतन्य चरितामृत लिखा है, वो स्वयं जब बोलेंगे आज के इस प्रसंग में, तब आप जरूर समझोगे। राजा परीक्षित का कितना पावन चरित्र है, पांडवों के वंशधर है, इसीलिए तो सुखदेव जी बिना निमंत्रण के भगवान की इच्छा से सामने से आया है, बेटा मैं सुनाता हूं भागवत तुम्हें। कोई नारियल नहीं भेजा, न फोन किया कि महाराज आ जाना है 27 मार्च, पास टिकट कुछ नहीं। देवताओं को भी जिसको दर्शन दुर्लभ है, ऐसे परम विरक्त चक्र चूड़ामणि व्यास नंदन भगवत तत्वज्ञ मर्मज्ञ रसज्ञ साधु सामने से आए राजा परीक्षित के पास। क्यों? क्योंकि परीक्षित में वो पात्रता है कि कलयुग से भी द्वेष नहीं। बताओ तो सही, भागवत के श्रोता का इसीलिए तो श्रवणे परीक्षित अभवत, विचार करना चाहिए द्वेष का है उसका, उसको भी मारना नहीं चाहता जैसे, और सार ले लिया। वीर राघव की बात ऐसे ज्यादा व्याख्या में और समय चला जाता है, लेकिन मूल पर पकड़े रहे तो भंवरा कमल के रस सार को ले लेता है मधु को, लेकिन कमल को क्षति नहीं पहुंचाता। अब देखिए, अगर भंवरा उस पर रस लेके उड़ जाए तो गुलाब में कोई कोई रंग बदल जाएगा या फिर कट छट जाएगा, कुछ एक पॉइंट कटी, कुछ कटी छटी नहीं, और अपना काम निकाल लेता है। देखो उदाहरण परीक्षित का भंवरे से दिया जा रहा है, मधुप से, उसमें कुछ साम्यता है ना, मेल है। जैसे भंवरा कमल के सार रस को ले लेता है फिर भी कमल को क्षति नहीं पहुंचाता, ऐसे कलयुग को दंड नहीं दिया और कलयुग का सार ले लिया। क्या सार था? कृता कुशलानी कलयुग में, यत कृतानी कुशलानी, आप जो भी यत मतलब जो, कृतानी मतलब कार्य, कुशलानी मतलब शुभ कार्य, सिद्ध्यंती कुशलानी आशु सिद्ध्यंती, जो आप अच्छे विचार करोगे कि आज इस वैष्णव के पास कथा सुनेंगे, इस वैष्णव की सेवा करेंगे, इतने भक्तों को प्रसाद देंगे, कुछ अच्छे शुभ कल संकल्प करो, और समय नहीं धन नहीं कुछ भी कारण से न कर पाओ, फिर भी वो करने का फल मिल जाएगा। यत कृतानी कुशलानी कृतानी आशु सिद्ध्यंती, तुरंत सफल होंगे, और न इतरानी च। और इससे विपरीत तो फिर हम प्रश्न पूछे, प्रभु जी आप बोल रहे हो कि किसी को धन दो, सेवा दो, प्रेम दो, न दे पाओ फिर भी फल मिल जाएगा केवल सोचने से, तो फिर उल्टा भी हो सकता है कि आज इसको गालियां देता हूं, आज ये भक्त चला जाए उसके पीछे फिर उसका सारा सद्गुण दूसरे भक्तों को बताता हूं। कोई भी पापमय प्रवृत्ति, दोषमय प्रवृत्ति, बोले न इतरानी, वो उसका फल नहीं मिलेगा, वो जब करोगे तब मिलेगा, बिना किए नहीं मिलेगा। और धर्म कर्म शुभ कर्म केवल सोचने से फल मिल जाएगा, ये कलयुग का एक गुण था। और 12वें स्कंद में सार बता दिया, कले दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुण। एक सार गुण था कृष्ण कीर्तन, जो अन्य युगों में तप व्रत जान कुछ भी करने से मिलता नहीं था, उन सब का फल, यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत् फलम लभ्यते सर्वम कलोकेशव कीर्तना, सब फल मिल गया, ये गुण था। इसीलिए हे ऋषि मुनियो, कलयुग को भी परीक्षित ने दंड नहीं दिया, उसका सार फल ले लिया, क्योंकि वो राजा सार ग्राही था, गुण ग्राही था। भक्तों भागवत के श्रोता बनना है, कृष्ण प्रेम लीला रस हृदय में स्फुरित करना है, तो परीक्षित की इस प्रेम पात्रता पर एक विचार जरूर होना चाहिए, और ऐसा बनने का विनम्र प्रयास भी होना चाहिए, हृदय से ऐसा बनने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि विष्णु पुराण में भगवान व्यास के वचन है, वो कथा सुनी है ना आपने, कली धन्या, गंगा में डुबकी लगा के व्यास मुनि बाहर आए, कौन है व्यास? ततो सप्तदशे जातो सत्यवत्या पराशरात चक्रे वेद तरस शाखा पुंस अल्पमेध साम। अल्पजीवी मनुष्यों के लिए वेदों की शाखाओं का विस्तार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्यास बनकर आए। जो काम ब्रह्मा नहीं की पाए, शिव नहीं कर पाए, यहां तक भगवत अवतार विष्णु नहीं कर पाए, वो व्यास ने किया। इसलिए वेद में उसके लिए आया, अचतुर्वदनो ब्रह्मा, चार मुख नहीं है फिर भी ब्रह्मा है, अभाल लोचनम शंभु, तीसरा नयन नहीं है भाल पर फिर भी शंभु है, और चार भुजा नहीं है फिर भी विष्णु है, भगवान बादरायण। क्यों? क्योंकि ये भगवान व्यास का अवतार नहीं होता तो अन्य किसी अवतारों की जगत को समझ जानकारी हो नहीं पाती, इसने दिया ना सब वेद पर। अगर व्यास अवतार ही नहीं होता तो दूसरा कौन अवतार, कहां हुआ, कैसे हुआ, किसी को क्या पता चलता। और वे व्यास जी ने कहा बाहर आकर, बोलिए गुरुदेव कौन सा समय सबसे धन्य है? बोले धन्य कलयुग। अरे कलयुग तो दोष निधि है, और आप कह रहे कि कलयुग धन्य है? बोले कलयुग में तो जन्म लेने से लोग प्रायण मंद, क्या श्लोक है सब जानते हैं, प्रायण अल्प आयुष कलो यस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। केवल उपद्रव, कलह, झगड़ा, मंद बुद्धि, मंद भाग्य, मंद समय, ये कलयुग। और व्यास भगवान कह रहे कली धन्य। अरे एक जगह ऐसा, एक जगह ऐसा, क्या करे, चक्कर क्या है, समझना पड़ेगा ना। तब भगवान व्यास ने एक श्लोक बोला, कृते सत कृतयुग, सतयुग को एक अलग दूसरा नाम है कृतयुग। कृते दश भी वर्षे त्रेतायायनेन च द्वापरेश्च तुमासेन अहोरात्रेण तत्कलो। जो 10 वर्ष के बाद सतयुग में 10 वर्ष तक तप किया जाए, जप किया जाए, कुछ भी धर्म कर्म किया जाए, वही फल, सेम फल त्रेता में, राम अवतार में एक मिले, एक साल में, और वही फल एक महीने में द्वापर में, और पूरा 10 वर्ष तक किया हो, सब फल केवल एक रात कोई कीर्तन सत्संग करे कलयुग में उसको मिल जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये कितना परसेंट सेल होगा बताओ, 80% 90 कहते ना, वो तो खुद चढ़ा के फिर सेल करते हैं, यहां ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे लोचन दास ठाकुर जी ने गाया, अभी प्रभु जी ने इसको याद किया था, इस्कॉन सूरत उपाध्यक्ष इसके श्री वृंदावन प्रभु जी ने स्मरण किया था, वो लोचन दास ठाकुर ने गाया है एक भजन, वैष्णव गीत में है। के जाबे भाई भव सिंधु पार, कौन जाना चाहता है भवसागर के पार, कौन जाना चाहता है, पूछ रहे के जाबे भाई भव सिंधु पार जाना चाहते हो। धन्य कलयुगे चैतन्यवतार। ये कलयुग, व्यास जी ने कहा कि हरिनाम संकीर्तन सार है, मन में पुण्य सोचो फल मिल जाएगा, ये भी एक गुण है, और इसके अलावा कह रहे हो कि अन्य युगों में तप जब कुछ भी करने से थोड़े समय में ज्यादा फल मिल जाता है, इसलिए धन्यता है केवल। बोले नहीं नहीं, नहीं। ये भी है, ओके, फिर भी गौण है। धन्य कलयुगे चैतन्यवता, ये कलयुग इसीलिए धन्य है कि राधा कृष्ण प्रेम विग्रह श्री गौरांग महाप्रभु ने इस युग में अवतार लिया, क्योंकि इसने केवल पाप काटना और पुण्य बढ़ाना और कम में ज्यादा फल दे देना वो सब नहीं, कृष्ण प्रेम रस दे दिया, गोलोक वृंदावन का प्रेम धन महावदान्य बन के मुक्त हस्त बांट दिया, ये धन्यता है। लेकिन बड़ा सुंदर भजन है, लेकिन वो अंत में कहते हैं कि चैतन्य तो कृपा कर दिए, सब जीव है ल पार प्रेमेर वातन से, सब जीव पार हो गए प्रेम की हवा से, चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की हवा बढ़ाया। पढ़िया रही लोचन अपना दोषे, बस लोचन दास केवल केवल लोचन दास रह गया इधर अपने दोष के कारण। सबे जीव पार है लो प्रेमे रवात, प्रेम प्रेम नदिया से पार हो गए गौरांग की कृपा से। पड़ी ला रोह ला लोचन, पड़ी ला रही ला लोचन अपना दोष है, मैं अपने कर्म फूटे थे कि रह गया इधर, नहीं समझ पाया। इसी को प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य चंद्रोदय में लिखते हैं, विस्तीर्ण गौरचंद्रे अवतीर्ण गौरचंद्रे विस्तीर्ण प्रेम सागरे, अवतीर्ण गौरचंद्र और विस्तीर्ण प्रेम सागर, यत्र न मज्जति, लेकिन उसमें नहीं स्नान कर रहा है, और मज्जति अनर्थ सागर है, मंदिर में आके भी अनर्थ कर रहे हो, मां मंत्र नहीं जप रहे हो, ये हमको लागू होता है। अनर्थ सागर में मस्त हो अभी भी, कर्म फूटे हुए। नरोत्तम दास ठाकुर इसी भाव को गाते,
विषय विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन नहाइनु।
सतत में विषय रस को ही पीता रहा और गौर प्रेम कीर्तन रस नहीं ले पाया। केने आछा प्राण, मैं क्यों जी रहा हूं? नरोत्तम दास केनु नागेनु मरिया, मर क्यों नहीं गया? क्या 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 भाव है बताओ, देखो आप विचार करो। इसलिए आप सारंग बनना है, सार ग्रहण करना है, और सार का सार भागवत है, और उसका सार भी भक्तिनाथ ठाकुर कहते चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत। क्योंकि ये अवतार कृष्ण पूर्ण अवतार है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन उसमें जो कुछ रह गया वो इसमें हो गया, इसीलिए गाया वासुदेव ने घोष में, अवतार सार गोरा अवतार केने न भजिल तार। जितने अवतार है उसमें सार अवतार गौरांग है, क्यों उसका भजन नहीं कर रहे हो आप? करी नीरे वास गेले ना पियास आपन करम फेरे। अरे यार, पानी के पास रह रहे हो, करी नीरे वास और गेले ना पियास, फिर भी प्यासे रह गए? इस कौन से जुड़े हो, उसके भक्तों से जुड़े हो, फिर भी प्रेम रस नहीं मिला? क्या कर रहे थे? पूछा जाए कि प्रॉब्लम क्या हो गया तुम लोगों को, कमी कहां रह गई? कंटक के रतरु सदाय से विली अमृत पाई बार आशे, अमृत पाई बार आशे। देखिए, बोले अमृत पीने की इच्छा थी और क्या गए तुम? अमृत पीना है तो जहां अमृत मिलता है वहां जाना चाहिए ना, वो कटेला जो होता है वृक्ष बबूल वहां पहुंच गए, तो वहां अमृत मिलेगा। और जो प्रेम करुणा रस का अमृत है हमारा गौरांग महाप्रभु का चरण, और वहां नहीं जा रहे हो। प्रेम कल्प तरु गौरांग आमार, प्रेम कल्प तरु गौरांग गाइए, प्रेम कल्प तरु गौरांग आमार, ताहार भाविली विशे, ताहार भाविली। वो चैतन्य महाप्रभु की कथा हो रही है, उनके प्रेमी भक्त मिले हुए हैं और तुम उसको जहर समझ रहे हो, वहां नहीं जा रहे। और संसार के ये जो लोग हैं विषय भोगों में वहां बैठ रहे, कैसे पाओगे? देखो, जब कर्म फूटते हैं ना, भाग्य जब उल्टा होता है तो कुछ सही काम के लिए जाओ फिर भी उल्टा हो जाता है। सौरभेर आशे पलाश सुचिली, सौरभेर आशे, मेरे को सुंदर सुंदर फ्रेग्रेंस सुगंध चाहिए था तो मैं फूल सूंघने गया, गुलाब का फूल लिया, कमल का फूल लिया, बोले सूंघता हूं क्योंकि अच्छी सुगंध मेरे शरीर में जाए, पर हुआ क्या? नाशाते पड़िल कीट, नाशाते पोशिल, लेकिन उसमें कीड़े थे, सूंघे तो जैसे ही सारे चींटे। देखो भाग्य फूटा है तो क्या करें, इक्षु दंड लागी। अरे कुछ मुझे चाहिए कि मैं मीठा रस लेने जाता हूं, कुछ कुछ मीठा चखू रस, तो मीठा तो आप सभी जानते हो, गन्ने के इक्षुदंड सुगर केन गन्ने का जूस रस मीठा होता है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने एक बांस जिसमें कोई रस नहीं, सूखा लकड़ा, उसको चूस रहा हूं, मीठा मिलेगा? इक्षुदंड लागी काठ चुशीली, इक्षुदंड के मने पाई बमीठ, तो कैसे मीठा मिलेगा भाई? काठ चूसने से, लकड़ा चूसने से मीठा नहीं मिलेगा। अरे आज तो इतना घोर कलयुग है कि गन्ना चूसो फिर भी मीठा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब जगह नकली है, सब जगह बिगड़ा हुआ है, डुप्लीकेट चाइना माल। गन्ना भी मीठा नहीं आ रहा है तो फिर ये कैसे मीठा होगा। हार बलिया गलाय परिली, मैंने सोचा कि हार है फूलों का गुलाब का, चलो गले में डालता हूं मैं भी, थोड़ा राजा महाराजा दिख जाऊं, अपनी भी नाम काम हो जाए। शमन किंकर साप, अरे मुझे क्या मालूम कि ये सांप था। जैसे कोई सांप को पकड़ के बोले हार है, वो तो डसेगा, जहर चढ़ा देगा। शीतल बलिया आगुन पहली, शीतल बलिया, अरे मुझे ठंडा चाहिए था और मैं अग्नि में कूद गया, केवल ताप मिला, ये सारा उल्टा हो गया। देखो कितनी बातें बताई, अंत में कहते ये सब क्यों हुआ जानते हैं। संसार भजिली गौरांग भूलिली, संसार भजिली ना सुनी साधुर कथा, ना सुनी साधुर कथा, संसार भजिली गौरांग भूलिली,
संसार भजिली
ना सुनी साधुर कथा, मैंने साधुओं के मुख से भगवत गुण कथा नहीं सुना, और संसार की वार्ता कुकथा मतिग्नि, जो मेरी मति में काम क्रोध लोभ और नरक ले जाए, ऐसी वार्ता गाता रहा, सुनता रहा विषय भोगों की, और साधु संग में हरि कथा नहीं सुना। क्या हुआ, यह पर काल दुकाल गो आई, यह पर काल, मेरा ये लोक भी गया और परलोक भी गया। देखो क्या करते हैं हम लोग, संसार के संबंधों में उलझे रहते हैं, एक दिन मर जाएंगे तो संसार से नाता टूट जाएगा, और जिससे नाता था राधा दामोदर उसे बनाया नहीं जाना नहीं, संसार तेरा रहा नहीं और भगवान को तूने तेरा बनाया नहीं, तेरा लोक भी गया और लोक भी। क्यों, क्योंकि तूने साधु कथा साधु संग नहीं किया ना, इसलिए बुद्धि ने, तेरा ये लोक भी गया परलोक भी, खाई ली आपन माथा, माथे पर बोझा बढ़ाया तू केवल। इसीलिए अभी भी समय है, जीवन है, सांस चल रही है, तो जाओ वैष्णव के चरणों में। भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत माला में बहुत सुंदर बात बताते हैं कि जो साधु वैष्णव सत्संग को छोड़ के और संसारी वार्ताओं में, जिसको प्रजल्प या मृत्यु को निमंत्रण कहते हैं, मेढक के ड्राव की तरह उसी को जो करते रहते हैं, वो लोग सोना छोड़ के मिट्टी के होते हैं, इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। इसलिए अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है तो श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज महानुभाव चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला तृतीय खंड के 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, आप सभी भक्तों को कहते हैं कृपा करके सभी प्रेम से हमारे पीछे उस श्लोक को बोलिए। चैतन्य चरितामृत 3:12:1, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गीयताम गीयताम मुदा, चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता, श्री चैतन्य चरितामृतम्। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, प्रतिदिन रोज श्रूयताम सुनिए सुनिए, गीयताम गीयताम गाइए गाइए, कैसे बोले मुदा, आनंद से, प्रेम से, भाव से, और फिर जो सुना है, जो गाया है, चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता, आप लोग भक्त होना, भक्त बनने चाहते हो ना, तो चिंत्यताम, जो सुना जो गाया उसका चिंतन करो, किसका? श्री चैतन्य चरित अमृत का। वास्तविक अमृत कुछ है तो वो चैतन्य का चरित्र है, इतना पवित्र है कि जो भी सुनेगा वो अमरत्व को पा जाएगा, क्योंकि असली अमृत यह है। वो स्वर्ग में जो अमृत है ना, वो नकली अमृत है। आप कहोगे आज तक तो सुना नहीं, नकली तो फालतू में बेचारे मंथन किए, नकली माल मिला क्या उन लोग को, इतना पसीना बहा दिया। नकली इसलिए कहा जा रहा है कि नाम अमृत है लेकिन काम अमृत का नहीं कर रहा। अमृतम, जो मारे नहीं, जो मरने ना दे, अमरत्व को प्रदान करे, वो अमृत होना चाहिए। लेकिन अमृत पी के भी देवता मरते है, गीता प्रमाण है, शीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। अगर अमृत पीकर देवता मरने नहीं चाहिए ना, लेकिन क्यों फिर शरीर छोड़ना पड़ रहा है उन लोगों को, क्यों लोक छोड़ना पड़ रहा है, तो मतलब वो अमृत अमृत नहीं है। और उस अमृत से भी बढ़कर कुछ अमृत है गंगा तट पर, इसलिए उस अमृत के साथ रिटर्न भेजा उन लोगों को। और उस अमृत को तो प्रमाण किया शिव ब्रह्मा जिनको गुरु मानते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जिसको नतमस्तक होते हैं भक्त भाव में। रम्या काचिद उपासना व्रजवधु, और वे गोपियों ने कह दिया तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातता भुवि गृणन्ति ते तव कथा मृक जब श्लोक राजा पढ़ी लो। ये श्लोक जब राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथ वल्लभ उद्यान पुरी धाम में चरण सेवा करते हुए बोले, प्रेमाविष्ट हैया प्रभु आलिंगन दिल। गौरांग महाप्रभु प्रेम करुणा से भर गए और राजा प्रताप रुद्र को अखबार में भर लिए। भूरी दा बोले प्रभु, चैतन्य महाप्रभु कहते भूरी दा त्रिलोकों में सबसे ज्यादा सौभाग्यवान दानी दातार आप हैं। गौरांग बोल रहे हैं, जिसका दर्शन नहीं करना चाहते थे। नित्यानंद प्रभु को निवेदन किया गौरांग ने कि अगर दोबारा अब नाम लिया मुझे मिलने का तो मेरा मुंह नहीं देखोगे, पूरी छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं मिलूंगा मैं प्रताप रुद्र से। सन्यासी हैया करे स्त्री संभाषण, विषय राजा और स्त्रियों से सन्यासी को मिलना नहीं चाहिए, नहीं करूंगा, नहीं मिलूंगा, अब बोला तो पूरी छोड़ के चला जाऊंगा, इतना कठोर। नित्यानंद प्रभु कभी नहीं देखे, फिर भी नित्यानंद प्रभु थे जो चैतन्य से कुछ बोल सकते, दूसरे भगत तो प्रसाद के लिए पहुंच गया, बोले यहां खड़ा नहीं रहना। नित्यानंद प्रभु ने फिर कहा कि एक काम करो, वस्त्र दे दो, राजा के लड़के को मिल लो। महाप्रभु ने कहा ठीक है, इतना ठीक है, लेकिन मिले नहीं। लेकिन आज वही उसको अखबार में भर रहा है इस श्लोक को सुनकर। क्या कहा चैतन्य महाप्रभु जी के शब्द है भक्तों, ये जो आप सुन रहे हो ना कृष्ण कथा चैतन्य कथा, ये अमृत है जिसको ब्रज की गोपियों ने कहा और प्रमाण अमलम भागवत इसको स्वीकार करता है। ये शिव जी का धन है, महाजनों का परम धन, यद वैष्णवा नाम धनम। और वो जब सुनने मिल रहा है ये हम लोगों का सौभाग्य है, इसको चरितार्थ किया चैतन्य महाप्रभु ने। महाप्रभु जी ने कहा,
तुम्ही मोर दिल बहु अमूल्य रतन, मोर दीते नाही किछु दिलो आलिंग।
हे, मैं तो जानता नहीं तुम कौन हो, प्रताप रुद्र को कह रहे, लेकिन जो भी हो तुम्ही मोर दिल, आपने मुझे दिया बड़ा अमूल्य रतन, सबसे अमूल्य वस्तु श्री कृष्ण कथा आपने हमको दिया, और बदले में आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, मोर दीते नाई किछु दिल आलिंगन। आप सब गुजराती भाई बहन थोड़ा बंगला भी ज्ञानी हो जाओगे सुनकर, बंगाली भी प्रवेश हो ही जाएगा, सरल है। मोर दीते नाई किछु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए मैं अपना आलिंगन दे रहा हूं। अरे आपके आलिंगन से बढ़कर दुनिया में क्या चीज है। के तुम्ही कैल मोर हित, तुम कौन हो, तुमने मेरा हित किया है। अचंबिते आती पिलाइल कृष्ण कथामृत, ऐसे ही आ गए गार्डन में और हमको कृष्ण कथामृत दे रहे हो, आपने मेरा बड़ा हित किया। चैतन्य महाप्रभु जी का प्राण था कृष्ण कथा, कृष्ण ये वैष्णव का ये अमृत है असली, इसीलिए तो वो सुभाषितम का श्लोक चरितार्थ हो गया ना, स्वर्गे सुधा नास्ती क्यों शयात, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग गिरते हैं, तो स्वर्ग में अमृत नहीं है तो कहां है, बोले चंद्रमा में, चंद्रमा में भी नहीं है क्योंकि वहां भी क्षय रोग है, वहां भी तो कड़ना बटना तो हो ही जाता है। वात्स्यायन जैसे ऋषि बैठे होंगे कामसूत्र के उपासक लोग, उसने कहा असली अमृत कहां है हम बताते हैं, स्वर्ग में नहीं है, चंद्रमा में भी नहीं है, ऐसे है अमृत का आभास चंद्रमा की किरणों से होता है, सोमो भूतवा रसात्मकम, और स्वर्ग में भी अमृत है, तभी तो कलश लेकर ये लोग आए थे, लेकिन काम का नहीं है। वधु मुखे, किसी स्त्री के होठों में अमृत, बोले नहीं है, नहीं तो पति मृता, तो उसका पति मरता क्यों है। अरे भाई मूल में जाओ ना, ये तो समुद्र में से तो निकला, तो समुद्र में तो अमृत है, क्योंकि एक घड़ा लेकर धनवंती निकले तो मतलब एक है, तो और भी स्टॉक होना चाहिए, 10,000 दे रहे तो तिजोरी में और होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम रथ यात्रा में जाना चाहिए फिर, क्योंकि और भी होगा, इतना दिया तो और होगा ना, ऐसा इतना ही है। तो सिंधु अमृत अस्थि नहीं, वहां भी नहीं है, शारात नहीं तो खारा क्यों है वो। सर्पों में वासुकी नाग के पास, बोले अमृत भीम को वहां भी होगा, तो जहर क्यों है उन लोगों के यहां। तो जहां पर भी है वहां रिजेक्ट के बताया गया, अंत में बोल दिया कंठे सुधा वसती भगवत जनाना, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त है उनके कंठ में अमृत है, जिस कृष्ण कथा को सुनकर पीकर लोग अमर हो जाते हैं, अमरत्व को पा जाते हैं, इसलिए गोपिया कहती है तब कथा अमृतम, आपकी कथा वास्तव में अमृत, वास्तविक हमें अमरत्व को पाना है ना, अमृतस्य पुत्राम है, अविनाशी के अंश है, लेकिन पड़े हुए है इस पुनरपि जन्म मरण में, इससे छूटने के लिए ये उपाय शुक मुखात अमृतम पिबंतम तो मुखाम भोजम च्युतम हरि कथा अमृतम। भागवत के कितने पन्नों पर इस बात को चरितार्थ किया गया, इसलिए कविराज महानुभाव का यह निवेदन, हम भक्तों के महाकल्याण का, प्रगति का, कृष्ण धाम कृष्ण प्रेम चरण रज या कृष्ण की लीला में प्रवेश तक का साधन बन सकता है, पूर्णता को दे सकता है, कहने का तात्पर्य यह है। तो आज प्रथम दिन है, और जो भी दास स्मरण चिंतन आ रहा है किया है गुरु कृपा से, आप सब भक्तों के कर्ण रंध्र के द्वारा हृदयस्थ कराना चाह रहा है, हो रहा है। चैतन्य चरित्र जितना पवित्र प्रेम सुधा रस साक्षात हम सब लेने चाहते हुए यहां आए हैं, इसको दिए है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। चैतन्य लीला को हम चालू करें उसके पहले उसके लेखक का थोड़ा परिचय जरूरी है। ऐसे कुछ मतभेद है स्वरूप से। कहते हैं कि वो रत्न एक सखी थी राधा रानी की लीला में, लेकिन प्रमाणित आचार्यों का मत है कि वो कस्तूरी मंजरी थे। मंजरी आज समझते हैं ना आप लोग? नहीं समझे तो किसी से समझ लेना क्या है मंजरी। कस्तूरी मंजरी लीला में, जैसे उनका नाम कृष्णदास है, उसके माता पिता का नाम भक्ति सिद्धांत सरोजी ठाकुर, कहते कि पता नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन बंगला के कुछ लेखक हो गए आशुतोष करके या हरिदास करके, जिन्होंने शब्दकोश लिखा है बंगला में, तो उन्होंने नाम अंकित किया है, लेकिन हमारे वैष्णव आचार्यों ने इसको प्रमाणित नहीं माना। भगीरथ उसके पिता का नाम था, सुनंदा माता का नाम था। ये बंगला वहां पर भी होते हैं ना बंगला लेखक, जैसे यहाँ हमारे नरसिंह मेहता हो गए गुजरात में, तो उनका इतिहास लिखने वाले कुछ कवि लेखक है, तो वैसे वहां पर भी जो प्रतिष्ठित हो गए जो लोग कुछ संत कुछ कवि कुछ लेखक, तो उनका इतिहास बाद में लिखने वाले होते हैं, तो उन्होंने नाम अंकित किया। लेकिन प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर कहते हैं कि किसी प्रामाणिक ग्रंथ से तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन उसका गांव का नाम प्राप्त हो रहा है। वर्धमान जिला जो है वहां से सालर एक स्टेशन है 20 किलोमीटर दूर, उसके गांव का नाम था झामटपुर, आज भी है। नेहाटी निकटे झामटपुर नाम ग्राम, तहां स्वप्ने देखा दिला नित्यानंद राम। कविराज महानुभाव चैतन्य चरितामृत के प्रथम भाग में अर्थात आदि लीला के पांचवें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि मैं मेरे गांव में मेरे घर में सोया था, तो स्वप्न में मुझे किसके दर्शन हुए? नित्यानंद प्रभु के। बोलिए नित्यानंद प्रभु की जय। दोनों समझना है, गौर लीला तक पहुंचने के लिए निताय कृपा पहले जरूरी पड़ेगी। वृंदावन दास ठाकुर ने तो चैतन्य भागवत में गौर लीला लिख ही नहीं पाए, नित्यानंद लीला से ही भर दिया। और वो तो गुरु, तो उनकी कृपा के बिना कैसे, बिनु निताई हेनु भाई राधा कृष्ण पाईते नाई। निताई मोरो करो सुखी, कृपा बोलो कनो करो आमी बड़ो दुखी। ये सब सभी आचार्यों ने स्वीकार किया इसको, नित्यानंद प्रभु की कृपा को। और थक गए भाग भाग के वैराग्य मूर्ति रघुनाथ दास, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिली तब तक गौर चरण नहीं मिला। फेल हो जाते थे, भागते थे लेकिन पकड़े जाते थे, रिटर्न आना पड़ता था, लेकिन इस बार वीजा लग गया, सिक्का लग गया, नित्यानंद प्रभु के चरण सर पर आ गए, रघुनाथ दास के द्वार खुल गए। पानी हट्टी कौन सा महोत्सव है? दधीचीड़ा महोत्सव का था। बहुत सुंदर बात है, सुनिए भक्तों। नित्यानंद प्रभु सपने में क्यों आए कृष्णदास कविराज के? आप लोगों के किसी के सपने में आए नित्यानंद प्रभु? जिसको आए हाथ ऊंचा करे। नहीं आए? आप सोते नहीं होंगे, या फिर सोते हैं तो सपने नहीं देखते होंगे। शायद हमारा मन उतना पवित्र नहीं, हमको तो ऐसे खतरनाक उघराने वाला सपना मावे पहला दर। और नहीं तो ऐसा सपना आता है पता नहीं कहां थे, अफ्रीका के किसी जंगल में, जागने के बाद भी याद रहता कि क्या था, कुछ तो देखा। राधा रानी रोती है, धन्याते योषित सखी स्वप्ने पश्यति केशव। राधा रानी कहती कि ललिता हे सखी सुनो, वो स्त्रिया योषित मतलब वो स्त्रिया धन्य है जो स्वप्न में कृष्ण को देखती है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले अस्माकं तु गते कृष्णे गता निंद्रा अपि वैरिणी। जब से कृष्ण मथुरा गए ये वैरिण नींद भी मेरी शत्रु हो गई। नींद ही नहीं आती, नींद आए तब सपना आए ना, और उस सपने में शाम आए ना, लेकिन जब से कृष्ण गए तब से युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। हमारी आंखों को रोने से फुर्सत नहीं, निस्दिन बरसत नैन हमारे। रोती रहती थी राधा रानी की स्वप्न नहीं आता हमको, ऐसे श्याम सुंदर नहीं दिखते। अगर कृपा करके थोड़ी नींद आ जाए और स्वप्न आ जाए तो सपने भी श्याम आ जाए, लेकिन जब से श्याम मथुरा गए सपने भी आना बंद हो गए। आप और हम चाहते हैं कि स्वप्न में भगवान आए, भगवान का कोई प्रेमी आए, तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा महामंत्र से और हरि कथा से, नहीं तो ये भूत प्रेत वही लोग आएंगे सपने में जो आते रहते हैं। क्यों आए? कविराज गोस्वामी के स्वप्न में साक्षात करुणा मूर्ति अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम क्यों आए, ये भी एक रहस्य है, सुनने लायक बात है। खास करके हम गौड़ीय वैष्णवों को, जिसको राधा कृष्ण प्रेम रस पाना है उसको तो सुनने के लिए ये बड़ी सुंदर कथा है। कविराज कहते हैं कि मैं कथा अपनी बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर नहीं बोलूंगा तो नित्यानंद प्रभु की कृपा का दुनिया वालों को पता कैसे चलेगा, इसलिए बोल रहा हूं मैं। अगर न बोलूं ये कथा तो नित्यानंद प्रभु कितने करुणावान है और कैसे दयालु स्वभाव, ये दुनिया को पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं अपनी कथा, मतलब क्योंकि उनके साथ हुआ ये घटना तो बोलना तो पड़ेगा। कृष्णदास कविराज किस जाति के थे? किस जाति के थे? एनीवन, किसी को पता है? छोड़ो, वैष्णव को बुद्धिमान बोलना चाहिए। बोले क्या पूछ रहे हो प्रभु, वैष्णव की जाति वाति नहीं होती? जवाब तो होना ही चाहिए अपने पास। पंखा किसने चालू किया? मैंने नहीं किया। किसने किया नहीं मालूम, लेकिन मैंने नहीं, ये भी सही जवाब है। किसने के किसी भी बात में वैष्णव की जाति कोई पूछे सीधा बोलने का, वैष्णव की जाति पाती न हरि केरा देश में। वैष्णव जाति बुद्धि सर ना, अरे वैष्णव में जाति बुद्धि करो नरक में जाशो, लाओ बुद्धो हमें न जो है ऐसे उत्तर है। लेकिन ये लिखा गया है, ये ते कुले वैष्णवेर जाति बुद्धि करे। जो भी व्यक्ति वैष्णव में जाति बुद्धि करता है, ये शूद्र जाति का है, ये ब्राह्मण जाति का है, ये ऐसी ऐसा भेदभाव करता है, तथापि ओ सर्वोत्तम वैष्णव किसी भी जाति में किसी भी कुल में हो वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। सब शास्त्र बोल रहे हैं क्योंकि ये जाति पाति से परे है, और ऐसे हम आत्मा है, आत्मा की एक ही जाति है जो परमात्मा की जाति है सच्चिदानंद। ममे अंश है ना हम लोग, उनके अंश है तो उनकी जाति वही हमारी जाति होगी ना तत्व से। ये पापिष्ट वैष्णवेर जाति बुद्धि करे, जन्म जन्म अधम योनि ते डूबी मरे। चेतन भागवत, अगर कोई वैष्णव में जाति बुद्धि करेगा तो जन्मो जन्म अधम योनि में जाएगा। इसलिए वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए, लेकिन जानना है भी कविराज गोस्वामी किस जाति के थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी टीका लिखी है चैतन्य चरितामृत पर। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रवाह लिखा, ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी चैतन्य चरितामृत पर लिखा, और उसके शिष्य श्रील प्रभुपाद ने भी लिखा चैतन्य चरितामृत पर। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि उनकी जाति, जब पिता का नाम ही पता नहीं चल रहा है तो जाति का कैसे पता चले। लेकिन अनुमान कि वेदों के शास्त्रों के पांडित्य के कारण, पांडित्य की प्रचुर समृद्धि जिसकी वाणी में थी, इसीलिए सारे सारे विद्वत समाज ने जिसको कविराज उपमा दे दी, लगता है कि ब्राह्मण जाति के होने चाहिए। अनुमान, समझ रहे ना आप, क्योंकि इतने बड़े बड़े पंडित जिनको कवि राज कहे और जिसकी वाणी जिसका वक्तव्य इतना प्रखर था कि सारे वेद शास्त्रों का सार अलंकार के साथ प्रकट होता था तो वाणी का वैभव था। आपड़े गुजराती में केवू होय ने तो जेनी वाणी में वेद नो वैभव होय अने जेना कंठ में कोकिल नो माधुर्य होय ई कोई हरि नो लालज होय अने जाति नो होय पछी ये कृष्ण के द्वारा दिया हुआ अकारण करुणा वरुणालय की ये अनुकंपा अनुग्रह है कविराज महानुभाव के ऊपर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनके पिताजी वैद्य थे, वैद्य समझते हैं डॉक्टर देसी वैद्य, लेकिन इसका पांडित्य बता रहा है कि ये ब्राह्मण हो सकते थे, ब्राह्मण थे ये भी अनुमान। लेकिन चैतन्य चरितामृत की रचना कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृंदावन धाम में राधा कुंड के तट पर की, तब वो सारी आश्रम जाति से अतीत परम हंस अवस्था में की। ये सब जाति पाति से कई ऊपर परम हंस अवस्था में इसकी रचना हुई। और अपने घर में उसने जामटपुर में जब थे, जामटपुर गांव बंगाल नेहाटी के पास, तो वहां वो कीर्तन रखे, सभी भक्तों को बुलाया कि आइए आज हमारे घर में कीर्तन है। तो सारे प्रेमी कृष्णदास कविराज के घर पर कीर्तन करने के लिए गए। उसमें एक नित्यानंद प्रभु के पार्षद श्री मीन केतन रामदास थे। अवुत अवधुत गोसाई एक भृत्य महाशय मीन केतन रामदास तार नाम है। अवधूत गोसाई नित्यानंद प्रभु को क्या कहते हैं? अवधूत साद्वैत सावधूत। हम बोलते हैं ना मंगलाचरण में साद्वैत अद्वैत को, और अद्वैत को प्रणाम है और दूसरा प्रणाम किसको है? अवधूत को प्रणाम। ये वास्तव में आप समझोगे नहीं तो कभी कभी इस्कॉन वाले ऐसे बोलते साद्वैत साव, तो जनता से अद्वैत ये अवधूत ये कौन है ये लोग, नाम भी अद्वैत अवधूत। अद्वैता हरि अद्वैत, जिसको हरि से द्वैत नहीं, जो हरि ही है वो है अद्वैत। विष्णु के अवतार थे अद्वैताचार्य। और अवधूत बलराम हईल निताय, ये तो साक्षात बलराम जी है जो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। संकर्षण कारणो दक्षाई शिरोब्दशाई जो भी महाविष्णु सब है उनके मूल है ये। स्वयं अवतारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम साक्षात। लेकिन इसको अवधूत कहा जाता है। अवधूत शब्द भागवत में तीसरे स्कंद के द्वितीय अध्याय में विदुर जी के लिए आया। अवसाद गृहीत्वा अवधुतम वेशम व्रतानी चेरे हरितोषणानी। विदुर जी धनुष पटक के हस्तिनापुर से निकल गए और हरितोषणानी हरि को संतुष्ट करने का व्रत लेकर और तीर्थ यात्रा घूमते घूमते कैसे हो गए? अवधूत हो गए। अवधूत की व्याख्या श्रीधर स्वामी ने वहां पर की है असंस्कृतम वेश, जिसके जिसके वेश में कोई संस्कार न हो। अपनी काठियावाड़ी भाषा हो गए जना दरहण भागवत में जड़ भरत को भी अवधूत उपाधि आई और भगवत अवतार ऋषभ देव को भी अवधूत उपाधि आई। अवधूत शब्द की वेद परिभाषा देता है अविलंघ्यात आश्रमात, जितने भी आश्रम है ये कितने आश्रम है? गृहस्थ आश्रम है ना, जो संन्यास आश्रम वर्ण आश्रम की बात हो रही है। यो विलंघ्यात आश्रमात वर्णात, वर्ण से आश्रम से जो ऊपर हो चुका है। आत्मनि एव स्थित पुमान, और जो अपने आत्मा में रमण करता है शरीर देह वर्ण आश्रम उपाधि से ऊपर। यो विलंघ्यात आश्रमात वर्णात आत्मनि एव स्थित पुमान अति वर्णाश्रमो योगी स अवधूत कथ्यते, उसे अवधूत कहते हैं। अनात्म ने नो हम जाए ने तो अ अटले आशा वगैरह, व अटले वासना वगैरह, धू ध अटले धीर, अने त अटले तत्ववेता, आने कहवाय अवधूत। गुजराती में, जिवरी में कभी कभी भागवत की ऐसे व्याख्या मतलब ऐसे सार रूप में देसी भाषा में, अवधूत अवधूत गोसाईर एक भृत्य मीन केतन रामदास इनु नाम उसका नाम। अब सुनिए, कीर्तन में वो बंसी लेकर आते थे बंसी, और कीर्तन में इतने आनंद में आते थे किसी को भी बंसी मारते थे, और कभी कभी इतने भाव में आ जाते थे तो हाथ ही साफ कर देते थे। कभी कोई लकड़ा लकड़ी देखते थे तो उसको उठा के भक्तों को बढ़िया से मारते थे, लेकिन कविराज कहते जिसको मारते थे वो खुश होता था कि कृपा मिली कृपा मिली, क्योंकि उसके पाप कट के प्रेम का प्रादुर्भाव श्री विग्रह में हो जाता था शरीर में। सब जब मीन केतन रामदास आए तो सब लोग खड़े हो गए, सब ने प्रणाम किया, लेकिन कृष्णदास कविराज के घर पर एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गुणार्णव मिश्र, जो ठाकुर जी की पूजा सेवा अर्चन करता था, और गुणार्णव मिश्र न करिल संभास, और उसने मीन केतन रामदास को न प्रणाम किया न आदर दिया न उससे बात किया। और इसको देखकर मीन केतन रामदास बोले, यही तो द्वितीय रोमहर्षण, ये दूसरा रोमहर्षण का अवतार है। तो पहला रोमहर्षण भाई कौन है? वो नैमिषारण्य वाला। यही तो द्वितीय रोमहर्षण सुत बलदेव देखी न कैलु प्रत्यगम, जो बलदेव जी गए थे यात्रा करते हुए और रोमहर्षण आसन से खड़े नहीं हुए। आहा, वो भी क्या कथा है, भागवत में हमें जाना नहीं, लेकिन जिसको भागवत के वक्ता बनना एक बार जरूर पढ़ लेना। किस दिन बलराम जी का हिल गया ना, हवा निकाल देंगे सब क्योंकि बलराम जी ने कहा धर्म ध्वजिनस्ते ध्वंसता, वहां पर कि ऐसे जो धर्म के आसन पर बैठकर पाखंड करते हैं उनको मारने के लिए तो हम शेरों का अवतार हुआ है, इसीलिए तो हम दोनों भाई ने अवतार लिया यदुवंश में। और इतना बोल के एक तिनका उठाया घास का गाल पर लगाया, राधे राधे पहुंच गए दाऊ महाराज। ऐसे तो दयालु है, लेकिन कभी कभी दयालु पुरुष जब क्रोध करता है ना फिर 1, 2, 3, 1, 2, 4 होता है। जो व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता वो जब करता है तब थोड़ा हटके होता है उनका क्रोध। इसलिए कृष्ण ने कहा दाऊ जी आप रहने दो आप रहने दो। दाऊ जी का क्यों भाई, मुझे जाना है तो मैं, मेरा दुशिष्य दुर्योधन, मैं जाता हूं मैं संधि समझाऊंगा। कृष्ण ने कहा रहने दो, क्योंकि आप बड़े भैया पता है ना, एक दो बार समझो नहीं समझोगे तो आप युद्ध करके आओगे, हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, रिजल्ट हो जाएगा उधर। और ऐसा कर दिए थे, आपका रिकॉर्ड बोल रहा है। हुआ क्या, वो खड़ा नहीं हुआ। तो इसने कहा ये दूसरा रोमहर्षण है। जब ऐसा सुना ना तो उसने सुन लिया वो पुजारी ने, कह अरे मुझे गलत, इसलिए फिर उस खुश हुआ और माफी मांगी। ये भी एक गुण है। देखो आप सब लोग जाग रहे हो तो एक बात बोल दूं, दिख नहीं रहे हो क्या है, अगर जाग रहे हो तो एक बात बोलना चाहिए। भागवत सही है 11:2:47 वहां पर लिखा है, अर्चायाम हरये पूजा यश्रद्धेये हते न तद्भक्तेषु न चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। जो भगवान श्री कृष्ण का अर्च विग्रह में उसकी श्रद्धा है, अर्चाया एव हरये पूजा यह श्रद्धये हते, श्रद्धा से करता है। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में हूं, और सबके हृदय में है तो सब मनुष्य के हृदय में है, सिया राम मई सब जग जानी। लेकिन उसमें भी जो भक्त है सब मनुष्यों में सबके हृदय में है, कुत्ते बिल्ली में भी है, पंडिता समदर्शिना शुनिस्व पाके च। तो फिर भक्तों में, भक्तों में तो तोमार हृदये गोविंद स्वांतस्थेन गदाभृता भागवत। मैं कुछ लोग जो अध्ययन करते हैं भागवत का कुछ श्लोक पता है वो कमेंट समझेंगे क्योंकि आप सभी भक्त हो, बहुत सत्संग भागवत भक्तों से सुने हो, इसलिए केवल थोड़ी सार बातें बोली जा रही है और ये सार बातें बोलने के लिए हमने हिंदी भाषा को चुना है, नहीं तो गुजराती में रफन टफ जावे। तो भद्रनाथ प्रभु हमको कहे कि आप क्या करोगे, मैं बोला इसका रिकॉर्ड होगा तो और भक्त लोग भी सुनेंगे, हिंदी वाले तरसते हैं और गुजराती तो सब समझते, गुजराती तो उसके सामने को आए बोले नहीं तो एने समझी जाए क्या को क्या केटला में से कहीं भाषा न बोले तो ओळखी जाए बोलो कौन से हुकाम आई वो से। तो उनके सामने में बोला कुछ भी भाषा बोलो टेंशन मत लो। फिर मैं बोला चलो फ्री हो गए, फिर फोन आया इनका, क्या बोलोगे आप, विषय कौन सा है, लीला कहोगे, कथा कहोगे, चैतन्य चरित भागवत कहोगे, अभी मूर्तिमान प्रभु भी बोल रहे थे कौन सा प्रसंग लेना था इसलिए मैं आपको फोन किया था। मैं बोला मेरे को भी नहीं मालूम क्या बोलूंगा, कुछ तो बोलूंगा चैतन्य चरितामृत से बोलूंगा कुछ तो। फिर एक सुनाया मैं इसको, एक दर्दी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर से कहा बहुत डर लगता है, कम कमरा है, क्यों, बोले मेरा पहला ऑपरेशन, डॉक्टर बोले मेरा भी पहला ही है। आ भाई हरखा आपड़े बे हरखा ऐसी ऐसी दशा है क्या करें बोलो। तो अब आशा है कि आप लोग जाग गए होंगे। भगवान की सेवा पूजा दामोदर को विग्रह को मानते हो लेकिन उसी विग्रह के पूजा करने वाले भक्त दर्शन करने वाले भक्त उन भक्तों को आप नहीं मानते हो, नहीं आदर देते हो तो आप कनिष्ठ प्राकृत भक्त हो। और फिर आप सेवा करते हो ना जिस भगवान की, उसको भगवान कपिल ने कहा 3:29-22 यो सर्वेषु भूतेषु संतात्मानमीश्वरम्। सभी जीवों के भूतों में संतर संति मतलब मैं रहता हूं, भगवान रहते हैं सभी जीवों के अंदर परमात्मा रूप में, अंडांतरस्थ परमाण चयंतुरस्तम। लेकिन जो व्यक्ति उसमें रहने वाले सभी के अंदर भगवान का दर्शन नहीं करता, भस्मनिये वजुहोति स, उसकी की हुई पूजा सेवा भस्म में किया हुआ हवन है, फैल। इसलिए भक्तों भगवान जिसके द्वारा मिलते हैं ना उन भक्तों को भूलिएगा मत। दुर्योधन और शकुनी को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बोला, संधि दूत बनकर गए और ये लोग स्वागत किए, प्रभु हमारे यहाँ प्रसाद लेना, दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, वे कृष्ण ने खाई इसके पहले कुछ बोली कि क्यों नहीं खाई, द्वेषात अन्नन भोक्तव्यम देशम अन्नन भोजये, जो भगवान के भक्तों से द्वेष करता है उसके यहां न खाना चाहिए उसको न खिलाना चाहिए। तो शकुनी का ऐसा कैसे बोल सकते हो द्वारकाधीश, हम लोग आपसे प्रेम करते हैं, मेरा भांजा रात में जाग के लड्डू बनाए आपके लिए, घरवाले ने हुआ न दीदी एने आ ऊपर खा खा एने लगाड़ी अना दुशासन तो ये लाडवा में सारा ना नाक तो जो मैं पैसा निकल सको। अगर आप में प्रेम नहीं होता तो रात भर जग के मिठाई बनाता आपके लिए, ये 56 भक्त के भोज आपके लिए बने हुए हैं, बिना प्रेम के बने हुए हैं। शकुनी का कमेंट देखो सही है कि नहीं, भगवान कहते तुम लोग का मुझ में प्रेम नहीं है, तुम द्वेषी हो। तो शकुनी कहते द्वेषी नहीं है, हम आपके प्रेमी है, जब से पता चला कि आप संधि दूत बन के आने वाले हो तब से हम लोग तो तैयारी कर रहे आपके स्वागत सत्कार की, और देखिए स्वागत सत्कार ये सजाया गया हस्तिनापुर केवल आपके लिए केशव। भगवान ने कहा नाटक बंद करो, पूरी दुनिया का मैं उल्ली बनाता हूं, तू मुझे बनाएगा मामा? जितने चीटर चोर चक्के हैं उसका बाप मैं हूं, छलम छलयता महम, और तुम लोग मुझे बना रहे हो। बोले नहीं बना नहीं रहे, आपके लिए हमने भोजन बनाया, और ये दिख नहीं रहा है, सुगंध नहीं आ रही आपको? भगवान ने कहा बनाया है, सुगंध भी आ रही है, फिर भी आप हमारे प्रेमी नहीं हो, आप हमारे भक्त नहीं हो, इसलिए नहीं खाएंगे आपके यहां। कैसे कैसे कैसे? क्या उत्तर दिया कृष्ण ने, भक्तो हृदयस्थ करने लायक। कृष्ण ने कहा आपका मुझ में प्रेम नहीं है, इसका प्रमाण है कि आपके मेरे भक्तों में प्रेम नहीं है। पांडव मेरे भक्त है और उसको आप द्वेष करते हो, क्योंकि जिसका मुझ में प्रेम होता है उसका प्रमाण है कि उसका मेरे भक्तों में भी प्रेम होता है, और आप मेरे प्राण तुल्य पांडवों से द्वेष करते हो, तो इससे पता चलता है कि आपको मुझ में भी द्वेष है। इसलिए प्रेम का प्रमाण धोती कुर्ता नहीं है, केवल प्रेम का प्रमाण भक्तों की सेवा है, उसको आदर है। ये गुरानव मिश्र सेवा पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद रामकेतन आए, जिसको जिसकी मार को लोग कृपा मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे। इसलिए हम गुरु वैष्णव को जैसे बलदेव को नहीं समझ पाया रोमर्शन। कथा ज्ञानी तो थे, रोमर्शन सूत तो वक्ता थे, व्यास के शिष्य थे, रोमर्शन नाम गुण के कारण हुआ था। ऐसी कथा करते थे कि रोमटे खड़े, हर्ष रोम मतलब रुवाड़ा, लोम र लयो भेदात, संस्कृत में र ल में कोई भेद नहीं, और वो हर्षित हो जाते थे, ऐसी कथा होती थी, और उसके भी और श्रोता के भी, इसलिए नाम था रोमर्षण। तो ज्ञान में तो कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी बलराम को आदर नहीं दिए, प्रणाम नहीं किए। बलराम जी ने कहा ऐसे पाखंडियों को हम रहने नहीं देंगे। तो बलराम जी ने भी मारने से पहले तीन श्लोक बोले है वहां पर भागवत में, 74 अध्याय पढ़िए आप, दशम स्कंद, मार दिया। क्यों नहीं प्रणाम किए? कविराज की कहते हैं कि क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा थी गुरुनानव मिश्र ब्राह्मण की, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता था। वो समझता कि नित्यानंद प्रभु एक साधारण अवधूत है, ऐसे ही घूमते फिरते रहते और ये इनका भगत है, इसको क्या लेना प्रणाम करना, इसलिए आदर नहीं था। लेकिन जब इसने बोला तो सावधान हुए, क्षमा मांगी और खुश भी हुए, दुखी नहीं हुए। देखो सच्चा भक्त हमें कुछ सलाह दे या डांटे ना, दुखी नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए, अपना सौभाग्य मानना चाहिए। हम है कि उनके साथ ही बंद कर देते हैं, हम हमारा जो प्रगति है सौभाग्य है उसको बंद कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कृपा करते हैं तब ऐसा कहते हैं, सबको कहते भी नहीं अपना भक्त। हमेशा दास दासानुभाव में सेवा करने वाला साधु कृपा करके कोई सही बात बताए, आपके उद्धार की सलाह दे, तो इसको सौभाग्य समझो। कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपनो दोष। भगवान की गुरु की कृपा तब मानी जाती है जब हमें हमारी गलती का एहसास हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा करता हूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। इस तरह का हृदय में कभी लगे ना तो समझो कि आज गौरांग की करुणा की छांट पड़ गई तुम पर। हमें तो लगता है कि सबके दूसरों के दोष देखे तब लगता है कि मुझ पर ही कृपा है, उल्टी सिस्टम चल रही है। नित्यानंद प्रभु की बड़ी महिमा है, आप चैतन्य भागवत में पढ़िए, पंडित तेरा पूछे प्रभु परीक्षये। नित्यानंद प्रभु ऐसे अवधूत जैसे रहते, क्या पहने क्या खाए क्या बोले कोई भरोसा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को कहा यह अवधूत राखे के न गहरे, ये तुम्हारे घर में इस नित्यानंद को क्यों रख रहे हो तुम, क्यों अपनार जाति कुल का ही न विचार। ये नित्यानंद किस जाति का है, किस कुल का है, किसको मालूम, और आप है कि उसको घर में रख रहे हो। श्रीवास पंडित ने क्या कहा जानते हैं? श्रीवास आंगन देखे आप लोग, नरदीप मायापुर गए ना, श्रीवास जी ने कहा मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे। अरे नित्यानंद मदिरा भी पिए और किसी यवनी स्त्री के साथ, मुसलमान स्त्री के साथ भाग जाए, शादी करे, लव मैरिज, कुछ भी करे, मतलब अब इससे बुरा तो काम नहीं होगा दारू पीना और, पर इससे तो क्या बड़ा करोगे। मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे, जाति प्राण धन यदि मोर हरे, और इससे मेरे कुल का भी नाश हो, मेरी जाति भी चली जाए, कुछ भी हो जाए, तथापि आमार मति नाही तार अन्यथा, फिर भी मेरा मन नित्यानंद के प्रति कभी दुर्भाव नहीं करेगा, मेरे लिए वो पूज्य इष्ट ही रहेंगे। गौरांग ने कहा तुमने मुझे खरीद लिया श्रीवास। लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें कि लक्ष्मी अगर एक बार हो जाए कि भिखारी हो जाए और दर दर भिक्षा मांगे, ये हो सकता है, लेकिन तुम्हार घरे दोष दारिद्र नहीं तुम्हार घरे, लेकिन तुम्हारे घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी, क्योंकि जिसको नित्यानंद के चरणों में विश्वास है गौरांग उसका दास है। और यही बात मुरारी गुप्त के विषय में हो गई थी, हनुमान के अवतार, ये नारद के अवतार है श्री भाई। मुरारी बसये याहर गुप्त हृदय, अतएव तार नाम मुरारी गुप्त होयो, होये। गुप्त रूप में, क्योंकि हनुमान जासु हृदय आगार बसहु राम चर चाप धर, और मुरारी गुप्त सभा भर के बेटे थे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सभी भक्त, तो मुरारी गुप्त ने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया पहले, नित्यानंद प्रभु को नहीं किया, बाद में किया ऐसे नकुबा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसको पिक्चर दिखाना पड़ेगा, और घर गए रात में सोए तब स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा, नित्यानंद प्रभु राजा महाराजा की तरह चल रहे और चैतन्य महाप्रभु सेवक की तरह छत्र डाले ऐसे, और सारे पार्षद लोग नित्यानंद प्रभु की जय जयकार कर रहे। सपन देखते ही सुबह आए दूसरे दिन सभा में, तो अब पहले नित्यानंद को किए, चेंज प्रोग्राम चेंज। बोले ये तो नौकर है जो बाजो, जिसको कल दंडवत मारा वो तो छत्र लेके जा रहा था, राजा धीराज तो ये है, ऐसी कथा है नित्यानंद प्रभु की। इसलिए इनको आदर नहीं था ना, ये दुख था, लेकिन अब तो सब सिस्टम खत्म हो, सब हो गया। अब कविराज महानुभाव, कृष्णदास कविराज का एक छोटा भाई था, उसका नाम चैतन्य चरितामृत में नहीं लिखा लेकिन अन्य ग्रंथों में लिखा है श्यामदास, उसने ये सब सीन देखा, और सीन देखा ना सब स्टोरी खत्म हो गई, कीर्तन भी खत्म हो गया, प्रसाद बढ़ गया, तब ये गए रामदास के पास जो नित्यानंद के पार्षद थे ना जो आए थे, और उसको कुछ बातें बत सुनाई, क्योंकि उनको भी नित्यानंद प्रभु के प्रति रुचि नहीं था और ये इनका भगत था। और इस बात को सुनकर कृष्णदास कविराज को गुस्सा आया, और उसने उसके भाई को कहा देखो श्यामदास तुम जानते नहीं हो चैतन्य नित्यानंद एक आत्मा है, अर्ध कुकुट न्याय मत करो, अगर नित्यानंद को नहीं मानोगे तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं कोप बरसेगा। बड़ा भाई समझा रहा है लेकिन नहीं मैं इस्कॉन वाला नहीं हूं, तो बोला बड़ो नानो बीजी भाई तुम जो बीजूत पकड़ूत कह गए क्योंकि रंगी नहीं खेते तू रंगा जाने रंग में। समझा रहे कृष्णदास कविराज कि नित्यानंद चैतन्य ईश्वर है, पूर्ण चंद है ना वो पूर्ण छंद तमो अनुदो गौड़ देशे पुष्पवंतो नित्यानंद सहोदितो, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। उसने कहा अगर तुमने नित्यानंद को आदर नहीं दिया, चैतन्य से कम समझा, या उनके भक्तों को तूने आदर नहीं दिया, सर्वनाश हो जाएगा, तू मेरा छोटा भाई है तुमको समझा रहा हूं मान जाओ, नहीं माने कुछ लोग होते हैं ऐसे। और उसी समय उसके भाई का नाश हो गया वर्णन है, और उस दिन कविराज महानुभाव जब रात में सोए ना नित्यानंद प्रभु उसके स्वप्न में आए। देखो छोटी सी सेवा थी, क्योंकि जो उसका सगा भाई था लेकिन पारिवारिक दैहिक भावना से मुक्त होकर सत्य धर्म का प्रवचन करके नित्यानंद गौरांग की फेवर की कृष्णदास कविराज जी ने, तो नित्यानंद प्रभु उसके स्वप्न में आए। शिक्षा क्या है कि हम दैहिक भावना से ऊपर उठकर असली वैष्णव भक्ति का प्रचार करें तो नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आए। कविराज ने थोड़ा अपना भाई है इसलिए फेवर नहीं किया कि नहीं हमारो भाई चढ़ ले, अपना भाई समझकर फेवर नहीं करना है। सत्य सत्य झूठ झूठ है, झूठ को साथ नहीं दे सकते, कपट को साथ नहीं दे सकते हम। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या गलती करते हैं भक्तों, अपने परिवार के अपने दैहिक संबंधों के मोह में फंसकर हम असली वैष्णव से झगड़ा करते हैं। वैष्णव में प्रसाद बट रहा है और वैष्णव को नहीं मिल रहा है और हम ले जाकर ऐसे लोगों को देते हैं जो हमारे हैं। एक उदाहरण, और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं ऐसे, कृपा नहीं पाते ऐसे लोग। और नित्यानंद प्रभु सपने में आए, नित्यानंद प्रभु सपने में आए तो कैसे थे? कविराज महानुभाव ने जब नित्यानंद प्रभु को देखा, श्याम चिंकण कांति प्रकांड शरीर, पूनम के चांद जैसा मुखड़ा चेहरा पूरा, और उज्जवल वर्ण था लेकिन थोड़ी शामता थी, ब्लू ब्लू स्काई ब्लू कलर, लेकिन चमकता हुआ उजला जैसा, और दिव्य शरीर था, साक्षात कंदर्प, साक्षात करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करे ऐसा स्वरूप, सुवलित हस्त पद कमल लोचन, हाथ पैर एकदम कोमल और आंखें कमल जैसी, सुवर्ण कंडल करणी स्वर्णांगत माला, सोने का कुंडल कान में पहना था, कौन से कान में? वाम श्रुति मूले, वाम मतलब लेफ्ट। आप कभी नित्यानंद गौर निताई का श्रृंगार करते हो तो नित्यानंद प्रभु को दोनों कुंडल पहनाते हो कि एक पहनाते हो? दो ही पहनाते होंगे, दो कान है तो। लेकिन आप जानते हैं बलराम जी एक ही कान में कुंडल पहनते थे। और आप पढ़िए चैतन्य भागवत, जब चैतन्य महाप्रभु नंदन आचार्य के घर नित्यानंद प्रभु से मिले, उसके पहले दिन उन्हें सब भक्तों को बताया कि मैंने एक स्वप्न देखा, एक दिव्य पुरुष आया है हमारे नगर में, वाम श्रुति मूले एक कुंडल धर, साक्षात बलराम होइल सही तो परम पुरुष। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि एक परम पुरुष हमारे गांव में आया है, वो बलराम का अवतार है साक्षात, और उसके वाम कान में एक कुंडल। और क्यों एक कुंडल पहनते नित्यानंद प्रभु, मतलब बलराम जी? कन्हैया की सेवा के लिए, क्योंकि हमारे कन्हैया के काले घुंघराले बाल है और कन्हैया को नित्यानंद प्रभु के दक्षिण भाग में सर रखने की आदत है, और कुंडल में बाल फंस जाए तो तकलीफ ना हो। एक कुंडल वाला अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन भगवान बलराम ये नहीं सोचते अच्छा लगो बुरा लगो, कन्हैया को बालों को कोई तकलीफ, एक भाव। तो ये जो अभी लोग एक कान में कुंडल, ये जो सिस्टम चला है ना, ये फैशन, ये इसके फाउंडर यही है। स्त्रियां तो दो कान में पहनती है, देखो ये हीरो लोग ये एक कान में ऐसा कर पहनते हैं। मैं भी पहना था, घोड़ा के स्टोर निकाल दिया। वो मेरा बहुत कुछ निकाल दिया, अभी बोलना नहीं आप लोग। अपने हो इसलिए। एक कुंडल पहनते थे नित्यानंद, कभी कभी आप एक पहना सकते हो, मैं कह रहा हूं पसंद आता है, क्योंकि कृष्ण से प्रेम करते हैं ना, कृष्ण के बड़े बने चाहे छोटे बने, सेवा मूड है, सेवक भगवान है। सूरदास जी ने क्या गाया, एक पद याद कर लो, गोकुल में चले जाओ, कन्हैया को बांध दिया और जब रो रहे थे तो बलराम को पता चला और पहुंच गए, किसने बांधा कन्हैया को? बोले मैया ने, काहे को जशोदा मैया बांधे होते बोरो कन्हैया, मोहन हमारो भैया के तो दधी पियो, तो कितना दही पिया था तेरा, मेरा कन्हैया छोटा है देखो उसका पेट भी कितना छोटा है, क्या हो गया? और हो तो को दिन जननी जानत सो, मां तूने बांधा है मेरे कन्हैया को, जननी जानत सो, अगर कोई और होता ना, और हो तो को दिन जननी जानत सो, मेरे कन्हैया को बांधने की बात छोड़ दो, केवल उंगली दिखा देना पूरे परिवार को यमलोक भेज दूंगा, खाली कन्हैया ने आंगली चिंदी दो जुबे, पृथ्वी पर जीव तो न रहे, रेशन कार्ड में नाम निकल जाएगा। त्यारे पर मैं करूं क्या, तू माँ है ना, मैं करूं क्या बता। कृष्ण और भैया मूंगो अरे तारी हटू कहू सू, पर धंधा हरखा करतो कन्हैया और रो रहे हैं। बलराम बोले तेरे लिए तो बोल रहा हूं लेकिन तू सुधर जा पहले, कितनी बार बोला मत कर चोरी मत कर काम। कृष्ण कह रहे सर तुम भी एक तो मैं बंधा हुआ और ऊपर से तुम प्रवचन दे रहे हो। कभी कभी भक्त लोग ऐसा कहते एक तो भूख लगी हुई पास लाम भूखे हैं। बोला नहीं था गुनो गिरो तुम्हारा मायवा है सत्संग में। पासा पूछे 5 मिनट है टाइम, बीजी बार आ गई बीजो है 5 मिनट अच्छा उधर लई लख्या ही लाई तेरे 15 मिनट में का लावे बीजो। ऐसा अनुभव हुआ होगा आप लोगों को, मने बहुत इतिहास इसलिए मैं नहीं करना चाहता वैसा अनुभव दूसरों को। कोई कन्हैया को उंगली दिखाए और वो जिंदा नहीं रहता। माता यशोदा के सामने बलराम की कुछ चली नहीं, महाराज जी बड़ा सुंदर सुनाते हैं। अंत तो बलराम जी भी रोने लगे कुछ नहीं कर सकते। शूर साम गिरी धर 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 हल धर यह सभी सदा रहत मेरे जीव। बस दोनों कृष्ण बलराम रोते हुए मेरे हृदय में राज करे। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मन मृजंतम तद अत्यंत विडंबनम कुंती कहती है। तो नित्यानंद प्रभु में आप भेद नहीं रखिएगा, नित्यानंद प्रभु की सुंदरता की बात हो रही है। सुनिए नित्यानंद प्रभु के दर्शन तो आप करते हो विग्रह के रूप में, लेकिन ये आंखों से नहीं कानों से दर्शन हो रहा है। चंदन लेपित अंग तिलक सुहाय मत गज जिमी मन मंथर चलाय गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोलिए निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल कोटि चंद्र ले पित जिनी मुख चंद्र करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी जिसका श्रीमुख शोभित हो रहा है और चंदन का तिलक किया हुआ है, चंदन के तिलक से सुशोभित और कभी कभी लाल होठों से नित्यानंद प्रभु हंसते थे ना तो डाड़म की कली जैसे सुंदर दंतावली अंदर थी। दाढ़ी मीज सम तांबूल चरवण गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि। बोलो नित्यानंद प्रभु तांबूल खाते थे, तांबूल समझते हैं ना पान, कृष्ण भी खाते हैं लेकिन ये लोग जो खाते हैं ना कचरा वाला पान वो पान नहीं, उसमें बड़ी इलायची सुगंधित अमृत सुंदर आइटम रहती है। लाल ऐसे ही होठ है कृष्ण के विषय में भी ब्रज के रसिकों ने यही गया अधर पर पान की लाल अरुण बिंब फलाधरोष्ठात ऐसे ही लाल होठ है और ऊपर से पान खाए गोरा मुखड़ा हो और लाल होठ बड़े सुंदर लगते हैं और वो जब होठ हंसे तो अंदर व्हाइट चंद्रमा जैसे दांत दिखते हैं, ऐसा लगता है कि किसी राजहंस ने अपने चांच में मोतियों की माला लगाई।
प्रेम मत अंगवा में दाहिने डोले,
प्रेम से मतवाले होकर कविराज महानुभाव के स्वप्न में नित्यानंद जी डोल रहे हैं और उसके हाथ में एक लकड़ी थी रांगा यष्टि रंगीन कलर की, रांगा मतलब कलरफुल, यष्टि यष्टि मतलब लकड़ी, कृष्ण भी लकड़ी रखते हैं ना, सृष्टिम मधुरम यष्टिम मधुरम यष्टि मतलब लकड़ी।
रांगा यष्टि हैले दोले जे मसीह मत
गौर हरि बो निताय गौर हरि बो गौर हरि बो निताय गौर हरि बो
गौर हरि बो निताय गौर हरि बो
प्रभु नाचते गाते मतवाले सिंह की तरह मतवाले हाथी की तरह क्या कहते कविराज को ओरे ओरे कृष्णदास ना करी है भय तुम भय मत करो चिंता मत करो क्यों वृंदावन जहां तुमी तुम जाओ यहां से जामटपुर से वृंदावन सर्व लभ्य है मैं नित्यानंद तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जीवन का सर्व सार कृष्ण प्रेम रस के प्राप्ति हो जाएगी जय जय नित्यानंद चरणारविंद जहर कृपाए पाए श्री राधा गोविंद नित्यानंदेर कृपा मोर यदि है रूप सनातन आश्रय मोर पर नित्यानंद की कृपा से रूप सनातन आश्रय मिला राधा गोविंद की प्रेम भक्ति मिली सब पा गया और इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ये कथा मैं बता रहा हूं कि वृंदावन जाकर चैतन्य लीला कृष्ण लीला रस सार हृदय में प्रकट हुआ किसकी कृपा से श्री नित्यानंद प्रभु की और इसलिए वो कह रहे कि मैं अपनी कथा नहीं बता रहा हूं ये नित्यानंद प्रभु की कृपा की कथा बता रहा हूं और इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल अहंकारे मत्त हया निताय पद पासरिया अहंकार में आकर अगर नित्यानंद प्रभु को भूल जाओगे मरोगे दृढ़ करी धर नीताय पाए नित्यानंद प्रभु के चरणों को दृढ़ता से पकड़ो जिस महानुभाव ने इतना दिव्य चैतन्य चरितामृत दिया उसका स्वभाव देखो वो क्या कहते इतने महान मूर्धन्य विद्वान है लेकिन अपने कृष्णदास जी स्वयं लिखते चैतन्य चरितामृत में कि मैं जगाई मदाई से बड़ा पापी हूं जगाई मदाई है ते मुहिते पापिष्ट पूरी शेर कीट है ते मुहिते लगिष्ट पूरी शेर कहते मल को अपने गुजराती में पोदड़ो कहे ना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं मालूम है पड़ा रहता है उसमें कीड़े होते हैं ना बोले मैं वो कीड़ा हूं मोर नाम सुने तार पाप है जो मेरा नाम सुनेगा उसको पाप लगेगा और मोर नाम लए जो मेरा नाम लेगा तार पुण्य शाय उसके पुण्य चले जाए वो ऐसे है नहीं लेकिन हनुमान जी जैसे कहते हैं ना प्रात लेत जो नाम हमारा ता दिन ते ही मिले ना हारा ए विभीषण लंका में कहते हैं कि जो मेरा सुबह सुबह नाम लेगा उसको दिन भर खाना नहीं मिलेगा ये हनुमान जी का दैन्य है कितने लोग उनके नाम से खा रहे हैं जहां होना हनुमान बेहरा रोड पे धंधो वाले उनके नाम से तो रोटी चल रहा है सबका लेकिन हनुमान जी खुद क्या कहते हैं मेरा कोई नाम लेगा तो उसे आहार नहीं ये दैन्य है उनका और स्वभाव देखो भक्त कृष्णदास कविराज कहते कि मैं चैतन्य चरितामृत लीला लिखने जा रहा हूं लेकिन मेरे ऊपर आप आचार्यों की वृंदावन दास ठाकुर की कृपा है जो पहले लिख चुके हैं चैतन्य भागवत
सहज विचित्र मधु चैतन्य चरित
सहज चरित्र मधुर है चैतन्य महाप्रभु
सहज विचित्र मधु चैतन्य विहार
लेकिन मैं क्या लिखूं इसके विषय में क्यों
वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार
अरे चैतन्य चरितामृत तो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है ऐसा लग रहा है कि उसके मुख से अमृत की धारा बह रही है अतएव ताहा वर्णिल उसी चैतन्य महाप्रभु को मैं फिर से लिखूंगा तो दंभ करूं ऐसा लग रहा है कि मैं दंभ कर रहा हूं देखो दंभ एक समझने लायक गीता का बड़ा सुंदर शब्द है दंभो दर्पो अभिमानश्च 16वें अध्याय में असुर प्रकृति के वर्णन में यह दिया गया है दंभ नहीं करना चाहिए असलियत में गुण होने चाहिए नहीं है तो जो है वही दिखाना है दंभ किसे कहते नहीं है वो दिखाना ज्ञानी नहीं है दिखाना धनवान है नहीं दिखाना और खासकर पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से मिला है ये याद रखना चाहिए। विश्वनाथ चकुली ठाकुर रासलीला पंचायत टीका लिखते हुए कहते हैं कि मैं श्रीधर स्वामी का उचिष्ट उसकी कृपा से कुछ बूंदे गिरी उस आस्वादन करना चाहता। ये नहीं कि इनको दिखा के मैं अच्छी कथा कर लूं, इसको दिखा के मैं ये कर लूं। किसी भी भक्त को गिराने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए क्षमता होने पर भी प्रस्तुति नहीं करते साधु। और उसके आचार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी फेंक दी पुस्तक गंगा में अपने मित्र के लिए। किसी भक्त का मान बढ़े ये बेयश, खुश होता है भक्त। ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति रस को पाता है। लेकिन दंभ में आकर ज्ञान है नहीं, लेकिन पंडिताई का प्रदर्शन मात्र होगा, प्रेम प्रकट नहीं होगा। ऐसे कार्य से मूर्ख लोगों की सस्ती प्रशंसा प्राप्त होगी, लेकिन परंपरा माने वाले आचार्यों की कृपा नहीं मिलेगी। ऐसे दंभ से कविराज कहते हैं कि मैं लिखने बोलने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं दंभ कर रहा हूं, और मैं दंभी बनकर अनादर या अकृपा से कृपा से वंचित रहना नहीं चाहता। अतएव तार पाए करी नमस्कार, इसलिए मैं वृंदावन दास ठाकुर को नमस्कार करता हूं और उनसे भीख मांगता हूं कि मुझ पर कृपा करे कि मैं उनकी कृपा से कुछ गाऊं चैतन्य चरितमानस। देखो ये भाव होना चाहिए। हम लोग भी प्रचारक है, इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, लेकिन इस परंपरा के आचार्यों का मूड क्या है, भाव क्या है। कौवे को हंस की चाल नहीं चलनी चाहिए। वो कथा जानते हैं आप लोग, कौवा हंस वाली? कौवा 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 ने एक बार पानी देवी गया, गंगा सागर में कौवा रहता था। गंगा सागर गए आप लोग? वहां एक सेठ थे, उसने कौवा पाला। सूरत में से जेने कोई कौवा पाले हो, कागड़ा पाले हो, पैरोट को पोपट पाले, कुतरा पाले, कौवे को कोई रखता है पिंजरे में, वो होता है तो भी उसको भगा दे, जाओ श्राद्ध में आ जाओ अभी जाओ। कौवे को कोई, लेकिन इसने कौवे को बनाया, और कौवे को सेठ था, बनिया था, खूब खिलाता था पिलाता, तो कौवा थोड़ा मोटा हो गया थोड़ा। लेकिन कौवा कितना भी मोटा हो, हंस थोड़ी बोलेगा, चूहा फूल फूल के हाथी थोड़ा बन सकता है, थोड़ा मोटा था तुम्हारा हाथी थोड़ा हो सकता है कभी। लेकिन इसको वहम ही आ गया कि मैं ही पक्षियों का राजा, बस मैं ही हूं बस। और कभी उसने देखा नहीं, सब छोटे छोटे पक्षी उसके सामने, चकली कबूतर सब लग रहे थे। तो ये कौवा इतना वहम में था, इतना भारी मोटा हो गया। एक दिन क्या हुआ, मानसरोवर से कुछ दो तीन हंस घूमते घूमते गंगा सागर आए, तो कौवा देख रहा है हाँ हमसे भी बड़ा कोई, और एकदम वाइट ये काला। तो हंस तो बेचारे सीधे साधे है, आकर बोले रात हो गई, थोड़ा आराम करेंगे, सुबह चलेंगे। लेकिन ये कौवा हंस को देख के कहता है, आप लोग कौन हो? हम भी आप ही के जाति के हैं, हंस ने कहा, पक्षी है। अच्छा पक्षी हो, उड़ते हो? हाँ उड़ते हैं। मेरी तरह उड़ सकते हो? हंस ने कहा, ना भाई तारी जन थोड़ी उड़ी है कि। अरे तुम पक्षी हो, सीखो हमसे थोड़ा। और कौवा सिखाया, ऐसे उड़ता है, कभी ऐसे उड़ता है, ऐसे उड़ता है। हंस के ठीक है ठीक है, अच्छा है, सुंदर है। अब ये सुंदर कहा ना, कभी कभी अच्छे भक्त लोग हमको कहते हैं, बरोबर अच्छा है प्रभु जी, आप ढोलाई ढोल थी जाए, फूले फूले नहीं फाटे, वो तो उनकी महानता है, यही कहेंगे ना, हंसों की महानता है। कौवे को कहा, अरे आप तो बड़ा बराबर एकदम सुंदर उड़ते हो। बस इसको पानी चढ़ गया। सुबह सब पक्षियों के बोला के कहा, अभी कॉम्पिटिशन होगा उड़ने का, सभी पक्षियों में कौन अभी तो राजा बनना है इसको, हंसों ने वखान कर दिया हमारा। और इसको दो तीन स्टाइल बता दिया, दो पांच श्लोक सुना दिया तात्पर्य के साथ याद रख के। तो किसाधु ने कह दिया, वाह 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 वाह, अब कौवा महाराज फूले फूले फूले, बोले कंपटीशन होगा। हंसों से कहता, चलो आ जाओ चलो उड़ते हैं। हंसों ने कहा, नहीं नहीं महाराज आप तो महान हो, उड़िए आप। बोले नहीं, दिखाना पड़ेगा पक्षियों के समाज में। हंसों को ऐसे भी जाना था, लेट हो रहा था, बोले चलो उड़ते हैं। किस तरफ? बोले बस भाव मां बोलिया ही क्यों, समुद्र तरफ। हंस तो उड़ते, और हंस तो धीमी गति से मंद उड़ रहे थे, और ये कौवा महाराज फास्ट में और कभी ऐसे उड़ता है और हंसों को देख देखो ऐसे इधर उधर, हंस तो ऐसे जा रहा है बेचारा। अब 10-15 किलोमीटर हो गया ना कौवा, अब उड़ा नहीं जा रहा है, पांख ही नहीं उड़ रही है, थक गया। और हंस को क्या, कौवा 50 बार फेरा करे ना, हंस खाली एक करता है बस, क्योंकि उनकी पांख ही है नहीं, तो मर्सिडीज है हम एस्केलेटर आवे लो ना, तू कहीं कहीं हाइट जा पेट्रोल भी जाए तारू। लेकिन वो भाव में ही आ गया था कौवा, कौवा बोला बस नहीं उड़ रहा है, लेकिन अब नीचे ही उड़ रहा है। अब वो पानी को गिरने लगा, पानी पीने लगा, हंस ने कहा ये कौन सी स्टाइल है, ये उड़ने की कौन सी कला है, पानी के अंदर वाटर अंडर डाइविंग कर रहा है। कौवा का कोई स्टाइल नहीं है, बचाओ नहीं तो जड़ समाधि थी जाए ना, पछी पाड़िया थे पूजाशु घड़वैया हमारे ठाकुर जी न था। बचाओ महाराज, हंसो ने फिर दया आ गई, साधु तो दयालु ही होते हैं, माफ करते हैं, उठाते हैं, और अपनी पांख पर ले लिया और बिना मतलब के फिर छोड़ने जाना पड़ा वापस उसको। इसीलिए हमें पूर्ववर्ती जो वैष्णव आचार्य है उनकी कृपा के कुछ पाया है, लेकिन उन्हीं के सामने अभिमान, उन्हीं का अपराध, उन्हीं को नीचा दिखाने का काम, ये कौवे वाली प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। बड़ी शिक्षा है, कविराज महानुभाव इतने महान है फिर भी कह रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि आपसे है, आप कृपा करिए कि कुछ में गाऊं, कुछ में लिखूं। कितना सुंदर भाव है। और कभी भी आपने किसी वैष्णव से सही सुना है ना, तो उसको याद करना चाहिए। कविराज जी लिखते हैं कि मैं चैतन्य चरितामृत का, क्यों, क्योंकि मैंने चैतन्य महाप्रभु के पार्षद स्वरूप दामोदर से सुना है, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद स्वरूप दामोदर से मैंने सुना है, कड़चा उसने लिखा था, क्योंकि वो रात दिन महाप्रभु के साथ रहते, डायरी लिखते थे, और वो मैं पढ़ा हूं। और दूसरा, उनके साथ 16 वर्ष तक रहे, रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में कितना वर्ष रहे, 16 वर्ष तक, और 16 वर्ष तक रहकर रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत देखा, बहुत सुना, और वो जब वृंदावन आए तो कविराज जी कहते कि मैं उनसे बहुत सुना हूं। स्वरूप गोसाई कड़ छाय लिखिलाय, जो लिखा है स्वरूप गोसाई ने अपने कड़छा में, कड़छा मतलब अपनी डायरी में, नोट में किया है, रघुनाथ दास मुखे सुनिया, और मैंने रघुनाथ दास के मुख से जो सुना है, ये सब लीला कही ताहा कैल विस्तारी, चैतन्य कृपा ते लिखी जाय। बस ये चैतन्य की कृपा है, उनके भक्तों की कृपा है कि मैं ये लिख रहा हूं। और क्या है ये चैतन्य लीला जिसको आप सुनने के लिए तैयार हो, आज के दिन से शुरू होकर 6 बजे, 6 दिन तक चैतन्य लीला सार स्वरूपेर भंडार, ते हो थुईला रघुनाथ दासे, ताहा किछु जे सुनिल ताहारे आमी विस्तारिलो, देई भेट भक्त जनगण। मैंने सुना मेरे गुरु से, वैष्णव से चैतन्य कथा, मैं भक्तों को देना चाहता हूं, भेंट के रूप बांटना चाहता हूं आप लोगों। और जो सुनने आए हैं ना श्रोता, कोई भी कभी भी आपके प्रवचन में कुछ सुनने आए ना, उसको गुरु मानो, अपने को गुरु मत मानो। हमारे आचार्यों की बात बता रहा हूं मैं, देखो कविराज क्या लिखते हैं, सब श्रोता गण करी चरण वंदन। कृष्णदास कहते हैं कि जितने चैतन्य चरितामृत सुनने आए श्रोता है, उन सभी भक्तों के चरणों में मैं वंदन करता हूं। तासवार चरण अमृत
शुभेर कारण,
क्योंकि वैष्णव के चरण से ही तो शुभ होगा, कल्याण होगा।
चैतन्य चरितामृत जेई जन सुने, तार चरण धोया मुई करुपाने।
जो भी व्यक्ति चैतन्य चरितामृत सुनेगा, कविराज कहते हैं कि उनके चरणों को धोकर मुझे पान करने का मन होता है।
कभी आपसे कोई गीता भागवत सुने, उन श्रोताओं के चरणों का जल धोकर पीने का मन हुआ कभी? तू धो मारा हूं गुरु सु, आरती उतार मारी, यमराज उतार से तारी हर की।
देखो यहां कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि जो गीता भागवत श्रोता सुनते उनके चरणों को मैं सर धो के पानी पी,
गुरु मानते हैं
ये सब। तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं कि तुलसी जाके मुख से धोखे हूं निकसत राम, ताके पग की पगतरी मोरे देह को चाम। अगर धोखे से भी किसी के मुख से राम नाम निकल जाए ना, तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने चमड़े को अपने शरीर से उसकी पादुका उसके जूते बन जाऊं। धोखे से भी ले तो, सच्चे दिल से ले तो जाऊ बलिहारी। जे जन गौरांग भजे से अमर प्राण, ऐसा मूड होगा तब भागवत हृदय में जाएगा, तब आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्मदम होगा।
स्तोतार पद रेणु करो मस्तके भूषण, तुम्हारे ये अमृत प्रिवे सफल है बेश्रम।
हे श्रोता जनो, आपके चरणों को मैं मेरे मस्तक पर आप मुकुट बना के कहता हूं कि आप लोग इसको सुनोगे तो मेरा ये परिश्रम सफल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के लिए लिखा हूं, भक्तों के लिए लिखा हूं। चैतन्य गाथा है, दूसरों के लिए नहीं है।
खुद अपने को इतना निम्न कहते हैं। याद करो भरत को, भक्तों रामायण में जाओ थोड़ा।
ओ, समय हो गया मेरा ध्यान नहीं,
कल जाएंगे। ऐसे टाइम तो सूरत वालों ने बिंदास में देख के मुझे चक्कर आ गया, नौ थी हाड़ा बाहर,
मैं तो धन से धन बाप धरती
का दातार का सूर दुहो याद आवी गयो,
जननी जन तो का
सापुई साहस तो जो हाड़ा बाहर।
लेकिन हम बारह नहीं बजाएंगे, किसी का नहीं बजाएंगे, हमारा काम नहीं बारह बजाना। हम
ये तो अमृत है। आज तो मैंने आप लोगों के सामने केवल कुछ बंगाली पद, कुछ भाव, प्रथम दिन चैतन्य चरितामृत चालू ही नहीं किया, लेकिन उसके क्या कहते हैं, बेसमेंट बनाते, कोई बिल्डिंग बनाते तो पहले प्लॉट खरीदना पड़ता है, ऐसे ही आज हम यहां पर समाप्त करते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आपने थोड़ा परिचय, थोड़ा उसका स्वभाव सुना, लेकिन हमें बनना है, क्योंकि चैतन्य लीला उसके हृदय में प्रकट हो गई, वही लीला हमारे हृदय में प्रकट हो, हृदयस्थ हो, तो जैसे परीक्षित में गुण थे श्रोता के, या तो कविराज में श्रोता और वक्ता के, हमें भी बेस्ट श्रोता वक्ता बनना है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। तो इसी को हम कल सुनाएंगे, और रामायण को याद करते हुए, क्योंकि भरत महाराज ने जब गंगा जी के त्रिवेणी के तट पर पहुंचे तो साक्षात गंगा जी ने कह दिया, तात भरत तुम सब विधि साधु। कृष्णदास कविराज अपने को निम्न कहते हैं, पापी कहते हैं, भोगी कहते हैं, कीड़ा कहते हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज को संतो क्या कहते हैं, साधु क्या कहते हैं? साधु वह है जिसे दूसरा साधु साधु कहे। आप अपने से अपना सर्टिफिकेट या अपने मूर्ख चेलाओं से अपने ग्रुप से सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। साधु वह है जिसे सच्चा साधु साधु कहे। और भरत को गंगा जी बोली त्रिवेणी प्रकट होकर, तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम सब प्रकार से साधु हो। क्या था भरत जी में, ये भरद्वाज बोलेंगे, इसको कल सुनेंगे। और इसी के साथ कृष्णदास कविराज के विषय में नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, मदन मोहन के, वृंदावन के जितने पंडा पंडित और साधु कविराज को क्या बोलते हैं, और वो अपने को क्या मानते हैं। और ऐसी स्थिति हृदय की होगी, वहां फिर याद नहीं करना पड़ेगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा।
तो ये चैतन्य चरितामृत के विषय में लिखा है कि पत्थर को भी पिघला देगा, मनुष्य का हृदय तो क्या चीज है, इतनी करुणा है, इतना रस है। आप लोग ठीक 9 बजे पधारेंगे तो 9 से 11:30 तक ये कथा चलेगी प्रतिदिन। आज यही समाप्त करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और राधा दामोदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्रीनाथ जी, गोपाल जी और हमारे प्यारे गौर निताय को प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको शक्ति दे, बुद्धि दे, ताकि हम चैतन्य लीला का सार राधा कृष्ण प्रेम भक्ति को समझ सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे,
राम राम हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद। आज गौर कथा के प्रथम दिन में प्रभु जी ने सुंदर चैतन्य चरितामृत की महिमा नित्यानंद प्रभु के विषय में हमें थोड़ा परिचय दिया। कल से हमारी चैतन्य चरितामृत का आस्वादन होगा, तो आप समय सर सभी पधारिए। और गुजराती में हूँ बोलू छू, तमे जे सीट पर बैठा छो जेनी नथी ये लोग नीचे बैसे, कारण कदाच आवती काल थी आवी जाए तो हक नहीं जमा तो भाई मारी छे अत्यार से बैठा जाई। तो आजे तमने छूट छे पण 9:30 पछी बधाने एंट्री मळशे, जेनी पासे पास नीचेना पास छे ने 9:30 पछी एंट्री मळशे, त्यां सुधी बधा ज भक्तो यहां पर आवे। अत्यार जे बैठा छे ने वांधो नथी, पण जेना सीट नंबर प्रमाणे ज बधा बेसे आवती काल थी, अने 9:30 पछी तमे नीचे थी ऊपर आवी शको छो। तो आजना प्रथम दिवस, आज के प्रथम दिन में प्रभु जी ने बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत महिमा के विषय में बताया। हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कल समय सर आप सभी पधारे ऐसा निवेदन है, कल 9 बजे आप सभी आ जाइए ऐसी प्रार्थना। 5 मिनट कीर्तन, अने काले माता जी नी सेवा छे, जे माताओ छे ने निवेदन छे। ત્રણ થી 3:30 વચ્ચે બધા આવતીકાલે હરે કૃષ્ણ ધામમાં પહોંચી જાય, માતાઓની કાલ સેવા છે। હરે કૃષ્ણ। શ્રીલ પ્રભુપાદ કી, શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત કી, દાય ગૌર પ્રેમાનંદે।
કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે राम, राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे
कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय जय प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत की जय निताय गौर प्रेमानंद।